ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकातराल्यये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की अपार कृपा से आज बहुत पावन मोक्षदायी एकादशी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद गीता भगवान की मुख की वाणी का प्रकट्य हुआ है। ऐसा दिव्य दिव्य आज का दिन है और यहाँ केशव सखा और कविता केवला प्रभा के प्रेरणा से और सहयोग से जो भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग चल रहा है उसके पांचवें दिन में आप सबका स्वागत है। कल हमने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत परम भागवत प्रहलाद का चरित्र, भगवान नरसिंह देव का प्रकट्य और फिर आठवें स्कंद में आज प्रवेश करेंगे। कल आठवें स्कंद के विषय में बताया था, मनवंतर स्कंद कहते हैं इसको। और स्वयंभू मनु स्वयं तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी के साथ गए थे। कुछ असुर उनके मारने के लिए आक्रमण करने लगे तो उनकी अपनी बेटी आकुति का पुत्र यज्ञ, जो भगवान का अवतार है, उन्होंने मनु की रक्षा, स्वयंभू मनु की रक्षा की। और आगे जो 14 मनु आगे आने वाले हैं उन सब का नाम लेके विस्तार से वर्णन है। कल तीन बातें बताई थी आठवें स्कंद में। मनवंतर को सद्धर्म कहते हैं। सद्धर्म से हमारी वासनाएं शुद्ध होती हैं, मन के ऊपर अच्छा विचार आता है तो कुछ संकल्प, हर मनु कोई न कोई विशेष कार्य सधर्म का स्थापन करता है। एक मनवंतर में एकादशी व्रत को स्थापित किया गया, स्वयं मनु ने तपस्या का मार्ग स्थापित किया। ऐसे सब मनु कोई न कोई सधर्म की स्थापना करते हैं और सामान्य व्यक्ति मानव उसका लाभ लेकर अपने जीवन को सफल करते हैं। तो जब हरि मनु, हरि के नाम से मनु था, उस मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई। सिद्धांत यह है कि जीवन में संकट तो आता है, आपत्ति विपत्ति आती है, तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। तो गजेंद्र मोक्ष के अध्याय, ये जो तीन चार अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है, इसमें दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा राजा इंद्रद्युम्न राजपाट को छोड़ के तपस्या करने के लिए तो चले गए, लेकिन शिव भक्त अगस्त मुनि जब आए तो वो उनके आदर में उठ के खड़े नहीं हुए। ये देखकर अगस्त मुनि ने उनको शराप दिया कि तुम मतवाले हाथी की तरह साधु के सम्मान में उठ के खड़े होने का ही तुम्हारा आचरण नहीं है, तो जाओ हाथी बन जाओ। गए तो भगवत प्राप्ति के मार्ग के ऊपर तपस्या करने थे के लिए गए थे, लेकिन अगर भगवत प्राप्ति की परिकाष्ठा नहीं मिली तो उनको अगस्त मुनि के शराप से गजेंद्र, एक हाथी लेकिन बहुत बड़ा भारी भरकम हाथी, वो भी स्वर्ग के त्रिकूट पर्वत की तलहटी में जहां वरुण का सागर है, वहां अनेक हाथनियों के संग जब चलता है तो पृथ्वी कांपती है और जब चिंगारता है तो शेर भी भाग जाते हैं। भोग तो बहुत मिला, तो ऐसा भी देखा गया है कि भगवान की भक्ति करते हुए भगवान न प्राप्त हो और किसी कारण से पतन हो तो बहुत सारा भोग, अपराध हो जाए तो भोग मिल जाते हैं। गजेंद्र को भोग तो मिले थे। एक दिन घूमते हुए सरोवर में प्रवेश किया अपने हाथनी और बच्चों के साथ क्रीड़ा करते हुए। एक मगरमच्छ ने, जो ग्रह उस सरोवर में था, उसने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। सब पत्नी और बच्चों ने सहायता की लेकिन ज्यादा समय जल में रह नहीं पाए। जो ग्रह मगरमच्छ था वो जलचर है, उसका बल बढ़ रहा था, और हाथी जो थलचर है, धरती के ऊपर रहने वाला है, उसका बल आस्ते आस्ते कम होने लगा, क्षीण होने लगा। तो गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न के साधन के समय जो भगवान की प्रार्थना थी उसकी याद आ गई और उसने भगवान को तत्काल पुकारा। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है और संतों के भाव में कि गोविंद शब्द उच्चारण किया, गो जब कहा तो भगवान वैकुंठ में थे और विंद कहने से पहले गरुड़ के ऊपर चढ़ के गजेंद्र को उन ग्रह के साथ, मगरमच्छ के साथ खींच के बाहर निकाला पानी से। और भगवान ने अपने सुदर्शन से चक्कर से पहले तो उस मगरमच्छ का गर्दन काटा, ग्रह का सर कटा और गजेंद्र का पांव मुक्त हुआ। लेकिन गजेंद्र को भी आश्चर्य लगा कि उस ग्रह के शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और विमान में चढ़ के वो तो अपने मार्ग पे जाने लगा तो गजेंद्र को आश्चर्य हुआ कि भगवान प्रार्थना मैंने की और पहले देखो उधार तो इसका हो गया। भगवान ने कहा जो मेरे भक्तों का चरण भी पकड़ लेता है तो पहले उसका उधार हो जाता है। और ये हुहू नाम का गंधर्व था जिसने देवल ऋषि का जल में पांव पकड़ने का प्रयास किया था, देवल ऋषि ने इसको शराप दिया था कि ऐसे जल में डुबकी मार के पांव पकड़ता है, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। तो बड़ी प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा था कि जब गजेंद्र मोक्ष का समय आएगा तब तुम्हारा भी भगवान विष्णु उद्धार करेंगे। और भगवान ने गजेंद्र को कहा अब तुम्हारे भी शराप के दिन समाप्त हुए, अब तुम हमारी भक्ति से वापस हमारे धाम आओगे। और इस कथा में व्यासदेव लिखते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वालों का भी भगवान मुक्ति मोक्ष कर देते हैं। तो यहाँ आपत्ति विपत्ति में भगवान को प्रार्थना करने से, भगवान के सानिध्य से संकट से मुक्त होकर भगवान की भक्ति और भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। इसके बाद की कथा आती है, भगवान जब सहायता करके सब कुछ देते हैं उदारता से तो सर्वदान का संकल्प करना चाहिए। और इस सिद्धांत के अंतर्गत खीर सागर के मंथन की कथा आती है। खीर सागर के मंथन की कथा की भूमिका ऐसे बनती है कि इंद्र अपने दिव्य हाथी के ऊपर चढ़ के और बड़े शोभा यात्रा में जा रहा था, सामने से भगवान शंकर के अंश से अत्रि और अनसुया का पुत्र दुर्वासा, आपको बताया है कि नहीं बताया है, अनुसुया देवहूति की पुत्री है, उसका विवाह अत्रि ऋषि से हुआ था और उसने जगदीश की प्रार्थना की थी तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो गए। तो अत्रि जी ने कहा आप तीन क्यों आए, मैं तो जगदीश को बुलाया। तीनों ने कहा हम तीनों जगदीश हैं, जगत के ईश्वर है तीनों। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि करता हूं और शंकर ने कहा मैं संहार करता हूं और भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो अत्रि ने कहा मैं तो पुत्र संतान चाहता था और अनुसुया तो किसी में दोष न देखने वाली पतिव्रता नारियों में चूड़ामणि सबसे महान है, तो ये तीनों अनुसुया अत्रि के पुत्र के रूप में आए, भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए और शंकर दुर्वासा के रूप में आए। तो तीनों ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो अगस्त तो दुर्वासा ऋषि जो शंकर जी का अंश है, उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई दिव्य माला भगवान के प्रसाद की इंद्र को देना चाहिए और इंद्र के सम्मान के लिए उसके गले में डाल दी, लेकिन इंद्र उस माला को उठा के एरावत के सूंड में डाल दी और एरावत ने सूंड से लेके अपने पांव के तले उसको माला का अपमान कर दिया। और दुर्वासा ये देखते हुए क्रोधित हो गए कि इतनी भगवान की दिव्य संतों की आशीर्वाद की माला गले में डाली है और ये मूर्ख उस माला का सम्मान न करके अपमान कर दिया, जा श्रीहीन हो जा, इसका मतलब इंद्र तेरा सारा वैभव समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ा प्रेरणादायक प्रसंग है कि भगवान के गले में डाली हुई माला कभी किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है तो उसको बड़े आदर से धारण करना चाहिए, अच्छी तरह से उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे नेताओं को बहुत भारी मालाएं पहनाने के बाद वो निरादर करके नीचे रख देते हैं, ये माला का अपमान है, डालने वाले का अपमान है। जो माला का भार नहीं उठा सकता है वो कौन सा नेता अपनी प्रजा का भार उठाएगा, या वो संत कौन सा दूसरों के कर्मों का भार उठा के उनको मुक्त कर सकेगा अगर माला भी धारण करने में समर्थ नहीं है। तो माला का आदर करना चाहिए, जब तक ये भगवान की प्रसादी माला भगवान का प्रसादी वस्त्र अंग के ऊपर होता है तब तक उसका काल भी हाथ लगाने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता है। अब इंद्र की श्रीहीन होने का मतलब उसका राजपाट सब संकट में पड़ गया। उसने जाके भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि अब मैं क्या करूं। भगवान विष्णु का इंद्र इस वक्त सारे असुरों का बल बहुत बढ़ा हुआ है, इस वक्त उनके साथ समझौता करना, उसके साथ आप जाकर संधि कर लो। फिर भगवान विष्णु ने एक उदाहरण दिया कि समय ऐसा जब संकट का दोनों के ऊपर हो, मानो एक टोकरी के अंदर, एक जाल के अंदर चूहा और सांप दोनों फंस जाएं, तो सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन चूहे को खा जाएगा तो न तो सांप बाहर निकल पाएगा उस जाल से या टोकरी से, सांप भी मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सांप और चूहे को संधि कर लेनी चाहिए कि चूहा तुम सो इसमें है, छेद कर लो, हम दोनों बाहर निकलेंगे। फिर जिसका जो धर्म है, तो सांप का धर्म है चूहे को खाना, वो तो खत्म होगा नहीं, ये नहीं तो दूसरा चूहा आ जाएगा, लेकिन बाहर तो दोनों निकलेंगे ना कम से कम, ये भगवान विष्णु बता रहे हैं। तो अभी आप जाए बलि महाराज के साथ संधि कर लो और खीर सागर का मंथन करो, उसके अंदर से अमृत निकलेगा, मैं आपको अमृत पिलाऊंगा, और अमृत पीने के बाद आपको वापस अपना राजपाट और श्रेय जो आपका ऐश्वर्य है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इंद्र देवताओं के संग बलि महाराज के पास गए, बलि महाराज के तो सेनापति क्रोधित होकर उठे। बलि महाराज ने कहा नहीं, इस वक्त ये हमारे से मैत्री भाव से आ रहे हैं। इंद्र ने कहा कि हम दोनों मिलकर, हमारे अकेले से संभव नहीं है, लेकिन काम बहुत बहुमूल्य है, भगवान ने प्रेरणा दी है, खीर सागर का मंथन करेंगे, अमृत प्राप्त होगा, हम सब मिलकर पियेंगे। दोनों में संधि हो गई। दोनों ने कहा समुद्र मंथन के लिए मंथनी क्या लाएंगे? बोला मंदराचल पर्वत को उठा के मंथनी बनाने के लिए लाना है। मंदराचल पर्वत को लेने गए, दोनों ने उठाने का प्रयास किया, सारे असुर मिलके, सारे देवता मिलके थोड़ा हिलाया, लेकिन सभी उसके नीचे दबने लगे। भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए। भगवान हरि ने उस, अब ये अगला वाला मनवंतर आ गया, एक मनवंतर आगे की कथा है गजेंद्र मोक्ष से। अजीत था, भगवान अजीत का अवतार गजेंद्र मोक्ष में और हरि का अवतार समुद्र मंथन में है। और भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया गरुड़ की पीठ के ऊपर और लाके खीर सागर के अंदर स्थापित किया, और फिर कहा कि अब इसको मंथन करने के लिए वासुकी सर्प को बुलाओ जो मंथनी में रसी बनेगा। वासुकी का आवाहन किया, वासुकी आया, कहा कि आप अब ऐसे करो हमारे लिए रसी बन जाओ, हम इस समुद्र का मंथन करेंगे। वासुकी ने कहा बड़ी पीड़ा होगी, आप दोनों खींचेंगे। बोला अमृत तो आपको भी पिला देंगे। अमृत किए लोभ में उसने सुकृति दे दी और मुख के तरफ देवता खड़े हो गए। भगवान ने कहा, तो असुर कहने लगे नहीं मुख की तरफ हम खड़े रहेंगे, आप पूछ की तरफ चले जाओ। तो भगवान जो खड़े थे अवतार जो इनका स्मारक दर्शन कर रहे थे, देवता और ठीक है आप पूछ की तरफ चले जाओ, अच्छा इसी में है, जब तक अमृत नहीं निकले तब तक झगड़ा मत करना। और वैसे भी असुर प्रकृति के जो लोग हैं अथवा बच्चे हैं, उनको आपको जो नहीं कराना है वो कहोगे ऐसे ही करेंगे, क्योंकि मुख के पास खड़े होने से जब मंथन होगा विष निकलेगा तो बहुत जलेंगे वो, और पूंछ के तरफ परेशानी कम होगी। तो होना देवताओं को खड़ा ही पूंछ की तरफ था, लेकिन वो पहले मुख की तरफ इसलिए खड़े हुए कि वो तो इसके विपरीत ही कहेंगे असुर के, हम जाएंगे मुख की तरफ तो अच्छा होगा। तो भगवान ने ये मनोविज्ञान से इनको खड़ा कर दिया। फिर मंथन करने के लिए प्रयास किया तो मंदराचल धरती में नीचे धंसने लगा, क्योंकि नीचे कोई उसका सपोर्ट नहीं था। उस वक्त भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, एक बहुत बड़े विशाल कछुए द्वीप की तरह उसकी पीठ के ऊपर मंदराचल को धारण किया। भागवत में लिखा है कि कच्छ अवतार के पीठ के ऊपर थोड़ी सी खुजली हो रही थी, और समुद्र मंथन से जैसे मंदराचल उसके ऊपर हिलने लगा, जैसे माँ अपने बच्चे के सर के ऊपर थोड़ा सा खुजाती है बच्चा सो जाता है, ऐसे कश्यप भगवान को नींद आ गई, और यहाँ समुद्र मंथन का भारी कार्य होने लगा। ऊपर से चट्टान हिलने लगी, भगवान ने हजार हाथों से ऊपर से पकड़ा है, अब देवता और असुर मंथन का प्रयास कर रहे हैं, हिल नहीं रहा है समुद्र। सतोगुण की वृत्ति से भगवान ने देवताओं में प्रवेश किया, रजोगुण की वृत्ति से असुरों में प्रवेश किया, और जब भारी मंथन का काम शुरू हुआ तो पहले हलाहल विष निकला और हाहाकार मच गई, अब तो प्रलय हो जाएगा। अरे सब देवता आए हैं, महादेव नहीं आए हैं, जाओ जल्दी प्रार्थना करके, भगवान ने कहा महादेव को मना के लाओ, ये तो भोलेनाथ ही इस विष का पान करेंगे। पार्वती जी से भोलेनाथ ने पूछा कि देवता संकट में, पार्वती ने कहा आप समर्थ हैं, परोपकार का कार्य है, निश्चित रूप से आप इस कार्य को संपन्न कीजिए। भगवान शंकर वहां पधारे हैं, दोनों हाथों में कालकूट विष को भर लिया है, अब जीभा पे तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जीभा के ऊपर भगवान का नाम निरंतर शंकर के चलता है, और नीचे हृदय में भी नहीं ले जा सकते, हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। उन्होंने विष को कंठ में ही रोक दिया, उनका नाम नीलकंठ हो गया आज। और परोपकार के लिए विष पिया तो भी शंकर महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। विष पीने के बाद भी भले का काम करेंगे तो भला ही मिलेगी, और इसके बाद थोड़ा बहुत विष जो उंगलियों के नीचे से गिरा उसमें से बिच्छू सांप और विषीली जो औषधियां है ये बन गई, और इसके बाद जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसके अंदर से बहुत सुंदर सुरभि गाय निकली। ये दिव्य गाय के प्रकट होने के लिए दोनों ने सहमत कहा कि ये तो ऋषियों को दे दी जाए, ऋषियों के पास गाय होगी तो यज्ञ होगा, सबका धर्म का पालन होगा। उसके बाद उस यज्ञ उस मंथन के अंदर से बहुत सफेद घोड़ा एक निकला उच्चही सर्वा। बलि महाराज ने कहा ये मुझे दे दो। आओ देवताओं ने कहा ठीक है आप ले लो। फिर बहुत सुंदर दिव्य एक हाथी निकला ऐरावत नाम का, उसको इंद्र ने ले लिया, और दिग्गज निचार निकले जो सब दिशाओं में खड़े होते हैं दिग्गज निकले। उसके बाद अप्सराएं निकली तो इंद्र ने कहा हमको चाहिए, वरुणी निकली तो असुर ने ले ली। उसके बाद चंद्रमा का प्रकट उसके अंदर से हुआ, 14 रत्न निकले, उसके बाद लक्ष्मी निकली। जब लक्ष्मी मंदिर से प्रकट हुई है तो समुद्र ने उसको साड़ी पहनाई है, ब्रह्मा जी ने कमल हाथ में दिया है, और वरुण ने कमल की माला पहनाई है, और ये माला लेकर लक्ष्मी का स्वयंवर जैसे होता है सब देवताओं की ओर देख रही है। सुंदरता तो है लेकिन बहुत द्वेषी है, ये बड़ा बलवान है लेकिन इसमें क्रूरता है। और जब भगवान को देखा समुद्र में सोए हुए हैं, बोला इसको कोई काम नहीं है, इसी को वरण करती हूँ। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का यहाँ वरण किया है, और इसके बाद मंथन के अंदर से 3रा रत्न जो मुख्य है वो भगवान धन्वंतरी निकले हैं, हाथ में अमृत का कलश लेके निकले हैं। तो 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले हैं, उन 14 रत्नों में 3 मुख्य माने जाते हैं। एक तो सुरभि गाय जो दो ऋषियों को दी गई जिससे धर्म का पालन हुआ, दूसरा लक्ष्मी जो सबका पालन पोषण करती है भगवान विष्णु का वरण किया, और तीसरा अमृत जो भगवान अब देवताओं को पिलाएंगे। अब जैसे ही अमृत का कलश निकला, असुरों में शक्तिशाली जो थे उन्होंने अमृत का कलश धन्वंतरी के हाथ से छीना और भागे के मैं पीऊंगा, दूसरों ने कहा मैं पीऊंगा, आपस में लड़ने लगे। इतने देर में सामने देखते हैं तो एक बाल आगे आ गया, बाल की ओर देखा तो सामने बहुत सुंदर भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया है, साड़ी पहनी हुई है ये नारी के रूप में, और उसको देखकर सारे असुर आश्चर्यचकित होके उसमें इतने मुग्ध हो गए देखने में, कहा देवी हम आपस में लड़ रहे हैं, आप हमको बांटकर अमृत पिलाने का कार्य करेगी। भगवान ने कहा देखो अकेली स्त्री हो, वो भी वन में हो, स्वच्छंद घूमती हो, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान ने जिस मधुर स्वर में कहा, देवताओं असुरों ने कहा हमको आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप जैसे हमको अमृत बांट के पिलाइए, हम में झगड़ा हो रहा है, तो कहा अमृत का कलश मुझे दो, फिर मैं जैसे कहूं ऐसे करो। आप देखो आपका सारा शरीर काला हो गया है, वासुकी के विष से आप सब जल रहे हो, अब जाओ पहले नहा लो, उसके बाद नए कप वस्त्र पहन के लाइन में पंक्ति बंद बैठ जाओ और मैं अमृत सबको पिला। तो एक तरफ असुर बैठ गए नहा धो के, एक तरफ देवता बैठ गए। अब मोहिनी मूर्ति कलश को नीचे रख के असुरों को कहती है देखो ये लालची देवता है, इनको थोड़ा पिलाने के बाद सारा आपको पिला दूंगी। वो तो कहते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, हमने तो आपके हाथ में दे दिया कलश, अब तो अमृत मोहिनी मूर्ति देवताओं को पिलाने लगी। तो राहु जो बैठा था उसने देखा, अरे ये तो अमृत सारा देवताओं को पिलाने, हमसे छल हो रहा है। वो देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान तो जानते थे लेकिन अमृत का प्रभाव दिखाना था। राहु ने अमृत पिया गले तक गया, चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि ये देवता नहीं है, भगवान ने मोहिनी मूर्ति ने सुदर्शन चक्र से राहु का गर्दन काट दिया। अब अमृत पिया था तो गर्दन तो उसका सर बच गया, राहु और जो नीचे का हिस्सा है वो केतु हो गया। अब यहां फिर एक प्रसंग को दोबारा सुन लीजिए। विष भी पिया शंकर ने परोपकार के लिए तो महादेव हो गया, और छल करके अमृत पिया तो भी गर्दन कटाया, छल करके कपट करके अमृत पीने से भी गर्दन कटा, और क्रूर राहु और केतु क्रूर गेहू जो ग्रह बन गए। लेकिन भगवान परोपकार के लिए विष पीने के बाद भी महादेव बन गए, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसके बाद देखो देवता और असुरों ने काम एक जैसा किया, जगह एक थी, स्थान एक था, परिश्रम सबने एक जितना किया, लेकिन एक को अमृत मिला और दूसरे को कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि असुर भगवान से द्वेष करते हैं। जो भगवान से द्वेष करता है वो अमृत पान नहीं कर सकता है। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच में घोर संग्राम हुआ, बहुत बड़ी भारी लड़ाई शुरू हो गई। देवता मरने लगे। क्यों? कि अमृत ने अपना प्रभाव दिखाया ही नहीं। अमृत ने प्रभाव क्यों नहीं दिखाया? अमृत ने प्रभाव इसलिए नहीं दिखाया कि जिस भगवान ने पांच पांच अवतार लेके इस लीला में, पहले तो भगवान ने प्रेरणा दी, फिर गरुड़ के ऊपर आके मंदराचल उठाने में सहायता की, फिर कच्छप अवतार लेके मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया, फिर तो प्रवेश करके देवताओं और असुरों में उनमें बल बढ़ाया, फिर ऊपर से चोटी को पकड़ा, फिर धन्वंतरी के रूप में अमृत लाए, मोहिनी रूप के में प्रकट होके अमृत बांटा। इतनी भगवान ने सहायता की और देवताओं ने दो हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद नहीं किया, कृतज्ञता भी व्यापन नहीं की, तो अमृत अपना फल नहीं दिखा रहा था। अब देवताओं को ध्यान आया, देवताओं ने हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना की, हे भगवान, आपकी कृपा से सब ये समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ है, जिसमें औषधियां सारी लाकर जामवत कहता है मैंने डाली थी, अब हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब अमृत ने काम शुरू कर दिया। अब देवता बड़े शक्तिशाली हो गए। देवता चाचुन चुन के असुरों को मारने लगे। बलि महाराज मूर्छित होके मर चुका था, उसको उठा के असुर ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो इंद्र, अब तुम्हारे को बल प्राप्त हो गया, तुम्हारे को राज प्राप्त हो गया, तुम्हें अमृत मिल गया, भगवान ने इतनी कृपा की है, अब असुरों के वंश का विनाश मत करो, युद्ध को समाप्त करो। इंद्र अपने आसन के ऊपर आके बैठ गया। यहां समुद्र मंथन की कथा पूरी होती है, लेकिन शंकर जी को आश्चर्य लगा कि मैं भगवान के मेहनत सब अवतारों का दर्शन किया, ये मोहिनी मूर्ति का अवतार, देवता भी इससे मोहित नहीं हुआ। मेरी इच्छा है मोहिनी मूर्ति का अवतार मैं देखूं, पार्वती को संग लेकर और नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान के पास गए और कहा, हे भगवान विष्णु, हमने आपके सब अवतारों का दर्शन किया है, मोहिनी मूर्ति अवतार देखने की मेरी इच्छा है। भगवान मुस्कुराए। अब तो पार्वती के संग खड़े हुए शंकर जी सामने देखते हैं तो सुंदर एक मोहिनी का मतलब जो मोहित कर दे, और साड़ी पहनी हुई है, बाल लेके कोई बच्ची खेल रही है, लड़की सुंदर, बच्ची तो नहीं सुंदर, नव युवती लड़की खेल रही है, उसके पीछे शंकर जी, वो आगे भागे, शंकर जी उसके पीछे भागे, पार्वती वहीं रह गई, और दृश्यों के आश्रमों के अंदर से मोहिनी मूर्ति जा रही है, शंकर उसके पीछे उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शंकर जी ने उनको पकड़ा, हाथ से निकल गई, शंकर जी की शक्ति का हास हुआ और भगवान मुस्कुरा के सामने विष्णु के रूप में खड़े हो गए। मोहिनी मूर्ति देखती है शंकर जी से कहा, शंकर जी के चेहरे के ऊपर कोई गिलानी नहीं है, बोला, भगवान आपकी माया से कौन मोहित नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात आपका मोहिनी रूप है। भगवान ने कहा, शंकर ये जो आपकी शक्ति है, ये भविष्य में भगवान मेरे रामचंद्र के अवतार में हनुमान के प्रकट्य का कारण बनेगा, और उस भगवान की शक्ति को सप्त ऋषियों ने संभाल के रखा, भविष्य में वायुदेव ने अंजना के उदर में स्थापित किया और हनुमान का प्रकट्य हुआ, और यहाँ ये समुद्र मंथन की लीला विराम पे आती है। तब बलि महाराज जो मर ही चुका था, उसको जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे, शुक्राचार्य उनका गुरु और भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास मृत संजीवनी विद्या थी, बलि महाराज को उन्होंने जीवित कर दिया, बलि महाराज उनका ऋणी हो गया। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हम आपको विश्वजीत यज्ञ कराते हैं, उस यज्ञ के बाद आप विश्व को विश्व विजेता हो जाएंगे। अब ब्राह्मणों में यज्ञ शुरू किया है, बलि महाराज के उस विश्वजीत यज्ञ के अंदर से पूर्ण आहुति के समय दिव्य एक रथ निकला है, बहुत सुंदर भव्य धनुष, और कभी भी जो समापत न हो अक्षय तुणीर निकला है, और उस वक्त प्रहलाद महाराज बलि महाराज का दादा प्रकट हुआ है, उन्होंने नक मुरझाने वाली कमल की माला बलि महाराज को पहनाई है। बलि महाराज अब बड़ा असुरों की सेना लेकर और स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्ग का इतना सुंदर वर्णन है, स्वर्ग के नंदन कानन का वर्णन है, सरोवरों का वर्णन है, वो तो देख के सब आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन देवताओं ने जैसे देखा झरोके से, कि असुरों का तो बहुत बड़ा भारी समुद्र सेना का आ रहा है। अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा, हे गुरुदेव, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बोला, इस वक्त ब्राह्मणों की कृपा से बलि संपन्न है, विश्वजीत यज्ञ के अस्त्र शस्त्र से संपन्न है, और प्रहलाद महाराज की दिव्य माला पहनी हुई है, उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। इस वक्त आप अदृश्य रूप से यहां से निकल जाओ। अब तो देवता सारे वहां से अदृश्य रूप से निकल गए। बलि महाराज ने इंद्र के आसन के ऊपर आके कब्जा जमा लिया, बैठ गए। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आपने आसन को जीत तो लिया है, लेकिन ये अवेद्य है। हम आपको ऐसा यज्ञ कराते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो फिर आप इंद्र आसन के ऊपर बैठने के अधिकारी बन जाएंगे। अब भृगुवंशी ब्राह्मण बलि महाराज के द्वारा नर्मदा के तट पे, जहां बरूच कहते हैं गुजरात में, इसका नाम पुराना भृगु कच्छ है, यहां यज्ञ का आवाहन किया। 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान करके बैठ गए। यहां कश्यप जो बाहर कभी तपस्या करने चले जाते थे, कभी सत्संग करने चले जाते थे, अपने घर में आए तो अपनी पत्नी आदित्य को थोड़ा सा मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो कहा, प्रिय, क्या घर में संध्या वंदन होने में कोई त्रुटि हो गई? अतिथि का सत्कार नहीं हुआ? गाय ब्राह्मण की सेवा नहीं हुई क्या? अथवा आपके पुत्र संतान तो सब ठीक है ना? आदित्य ने कहा, पतिदेव, संध्या वंदन, गौ ब्राह्मण की सेवा, यज्ञ आदि ये कार्य तो संपन्न हो गए। आपने मेरे पुत्रों का पूछा है तो मैंने इंद्र आदि मेरे आदित्यों को कुछ समय से देखा नहीं है, और राज खाली पड़ा है, और बलि महाराज ने उनके ऊपर आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त हो गई। तो कश्यप कहता, जब सृष्टि करने के समय ब्रह्मा जी ने मुझे 13 दिन का पयोव्रत बताया था, अब आपको मैं ये व्रत बताता हूं, आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। आदित्य ने पयोव्रत किया, रोज को दूध पिया 13 दिन तक, एक दिन से थोड़ा दूध ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा करके दूध का व्रत किया। अंतिम दिन पूर्ण आहुति के समय भगवान प्रकट होके कहते, माता आदित्य, मैं आपके व्रत और पूजा से प्रसन्न हो गया, लेकिन इस वक्त बलि महाराज को मैं, क्योंकि वो एक तो धर्म के रास्ते पे है, दूसरा ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों की उनके ऊपर कृपा और सहायता है, मैं उससे अन्याय करके तो राज नहीं छीन सकता, लेकिन आपने माता जी इतनी प्रेम से मेरी पूजा की है तो आपको भी मैं असंतुष्ट नहीं कर सकता हूं। अब ऐसा करो माता जी, आप अपने पति कश्यप में मेरा ध्यान करो, समय आने के ऊपर मैं आपके यहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, फिर मैं इंद्र का छोटा भाई बन जाऊंगा, तो फिर मैं अपने भाई की सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा, अब किसी को बताना नहीं। आदित्य ने बड़े ध्यान से कश्यप में भगवान का ध्यान किया, समय आने के ऊपर आदित्य और कश्यप के यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुआ, और सबके देखते देखते छोटा सा ब्राह्मण बन गए वामन। उस वक्त सारे देवता प्रकट हो गए, देवताओं ने, सूर्य देव ने गायत्री का मंत्र दिया, पिताजी ने मेखला दी, और पृथ्वी ने मृगशाला दी, माँ दुर्गा ने उनको भिक्षा का पात्र दे दिया, और छाता वरुण ने दे दिया, ऐसे उनको सब देवताओं ने उपहार दिया है। अब यहां से वामन देव छोटे ब्राह्मण के रूप में तेजस्वी छाता हाथ में लिया है और ब्रह्मचारी के रूप में बलि के यज्ञ स्थल की तरफ चला है। जब यज्ञ स्थल के निकट पहुंचा है तो सारे भृगुवंशी ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे कह रहे, ये तो सुबह सूर्य उगा था, ये दूसरा प्रकाश कहां से आ गया? जैसे देखा के बहुत दिव्य चमकता हुआ एक ब्राह्मण बालक आ रहा है, तो सब यज्ञ के अंदर दीक्षित थे लेकिन उठ के खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए। भगवान था तो भगवान के सम्मान में खड़े हो गए। बलि महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, सौभाग्य हमारा है कि यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय ऐसा ब्राह्मण दिव्य तेजस्वी कोई पधारे, तो हमारा तो कई कुलों का किया हुआ पुण्य आज प्रफुल्लित हुआ है, अंतिम यज्ञ आज, और यज्ञ को रोका नहीं जाता है। बलि महाराज ने, कोई बात नहीं, अब आप ब्राह्मण पधारे हैं, बोलो आपको क्या चाहिए। बलि के दरवाजे से मांगने वाला और कहीं मांगता नहीं है। एक बार बलि के लिए दे दिया तो फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। धरती चाहिए, ब्राह्मण कन्या विवाह के लिए चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए। और फिर आसन के ऊपर बिठा के उसका चरण धोया है, चरण धो के ब्राह्मण का चरणामृत लिया है, सर के ऊपर जल डाला है। ये गंगा जो धरती के ऊपर अभी आई है, आज ही अभी इसकी कथा करेंगे 15-20 मिनट के बाद, ये वामन देव का चरण धो के नीचे उतरती है, इसलिए इसका नाम गंगा हो गया। वहां ध्रुवलोक में गिरती है, ब्रह्मा जी के करमंडल में आती है, शंकर जी की जटाओं में आती है, फिर धरती पे आती है। कितना भाग्यशाली बलि है कि वो भगवान का चरण अपने हाथ से धोया और उसका जल साक्षात भगवान का चरणामृत गंगा जल उसने पिया। इतना बड़ा सौभाग्य उस बलि का समझना चाहिए। और बलि महाराज तब अब मांगने से पहले कहते हैं, आपका वंश बड़ा, आपके वंश के अंदर प्रहलाद के लिए तो भगवान का अवतार हो गया, हिरण्यकशिपु तो वैकुंठ के ऊपर भगवान के से बदला लेने के लिए, तो भगवान छुप के उसकी दिल में बैठ गए। आज भी वाराहदेव सोचता है कि हिरण्यकश्यप ने कितना एक ब्रह्मा जी के दिन तक युद्ध किया, आपका पिता विरोचन ब्राह्मणों को अपनी आयु दे दी। बलि महाराज आप बहुत दानी हैं, निश्चित रूप से यहाँ जब किसी से कुछ मांगना है तो उनके कुल की परंपराओं की प्रशंसा करनी चाहिए, ये भगवान सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। बलि महाराज ने कहा ठीक है महाराज, अब आप मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको। तब वामन देव कहते हैं, मुझे मेरे पांव से नाप के 3 पांव जमीन के चाहिए। बलि महाराज हंसने लगा कि ब्राह्मण इतनी बड़ी विद्युता से बातें कर रहे थे, बड़े समझदारी की, लेकिन मांगना तो नहीं आता है। बलि के घर से 3 आपके पांव के जमीन का मांगने से क्या होगा। बलि महाराज कहते हैं, देखो बड़े बड़े राजा गया और पृथ्वी जैसे हुआ, जो सारे सम्राट थे, लेकिन किसी की इस धरती में पूर्ति नहीं होती है, और ब्राह्मण को कभी जरूरत से ज्यादा मांगना नहीं चाहिए, आवश्यकता से अधिक ब्राह्मण का मांगना उचित नहीं है। ब्राह्मण संतुष्टि होना चाहिए, ब्राह्मण सदा संतुष्टि होना चाहिए। अब आप संकल्प करो दान करने का। तो विंध्यावली पत्नी बलि महाराज की वो सोने की झारी में जल ले आई है। उस वक्त शुक्राचार्य उठ के खड़े होके कहते हैं, हे बलि महाराज सुनो, ये जो छोटा बालक है ना, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है, ये छल कर रहा है, ये सब कुछ आपसे छीन लेगा। अभी तक आपने ओम का उच्चार नहीं किया है, और ओम का उच्चार नहीं किया है तो आप अपने वचन से वचन को बदल दीजिए। वैसे भी विवाह में के प्रसंग में कहीं हास्य में कुछ कहा जाता है तो उसका कोई माना नहीं रहती है। बलि महाराज कहते हैं, अगर ये विष्णु है तो भी मेरे से मांगने आया है, वैसे भी ये सृष्टि का स्वामी तो वो है, अगर उस मुझे मांगने आया है तो देने वाला मैं हो गया, लेने वाला ये हो गया ना, और मैंने वचन दे दिया है गुरुदेव। अब पृथ्वी कहती है कि मैं झूठे का वचन बदलने वाले का भार नहीं उठा सकती, इसलिए अब तो मैं वचन पूरा करूंगा। तो शुक्र आचार्य तो गुरुदेव है, उसने अपना मार्ग बता दिया, झारी में से जल लेने लगे, संकल्प पूरा हो गया। भागवत में तो इसका वर्णन नहीं है। एक आपका ये माइक शायद बंद हो गया, हरे कृष्णा। सो झारी में के जहां से टूंटी के अंदर शुक्राचार्य जाके बैठ गए कि पानी न गिरे, ऐसे कुछ पुराणों में वर्णन आता है, तो भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य पानी से संकल्प करने नहीं देता है। तो भगवान ने तिनका लेके मारा तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, उनकी एक आंख बच गई है, वो बाहर निकल गए, संकल्प हो गया। अब भगवान जब लेने का समय आया तब वो बड़े हो गए, त्रिवर कर्म हो गए, वो इतने बड़े हुए कि पहले चरण लंबा किया तो पूरी पृथ्वी को नापी, सारा धरती के 14 भुवन नापने लगे, और दूसरा पांव जाके ब्रह्मा के सत्यलोक से ऊपर जाके ब्रज नदी का छेदन करके सोराख कर दिया, ऊपर कारण सागर का जल और ब्रह्म द्रव्य भगवान का चरण धोया तो इसका नाम विष्णुपति हो गया। भगवान विष्णु का चरण धोया, वो इसी का नाम गंगा है, वो वहां से ध्रुवलोक में गिरती है। अब बलि महाराज, फिर बलि महाराज के सामने वामन देव छोटे हो गए और छोटे होके कहते हैं, सुनो तीसरा पांव कहां रखूं, बड़ा दानी हो रहा था ना, इसका वर्ण पास से बांध लो। अब बलि महाराज को बांध लिया है वर्ण पास से और बलि महाराज कहते हैं, मैंने मेरे तप से, मैंने मेरे बाहुबल से इस पृथ्वी के राज को प्राप्त किया था और मेरे यज्ञ से मैंने दिव्य लोकों के ऊपर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इन दोनों को प्राप्त करने वाला तीसरा मैं, और ये मैंने सब मेरे अपने मस्तिष्क से किया था, ये मेरा माथा, अब मैं तीसरा आपके चरण रखने के लिए देता हूं, आप अपना तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रखिए। इसको कहते हैं अपने अहंकार को अर्पण करना, अपने ममता, महत, अहम ममेति, मैं और मेरापन को अर्पण करना। इसलिए बलि महाराज को नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन का उदाहरण कहते हैं, जिसने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। और हमारी प्रचलित भाषा में बलिदान शब्द बलि महाराज के दान से आया है, जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे भगवान को, उसके साथ इसने बलिदान दे दिया, तो बलि से बलिदान शब्द हमारी भाषा में आ गया। और भक्ति के नवे अंग आत्मनिवेदन का आचार्य बलि महाराज है। भगवान ने बलि के सर के ऊपर चरण रखा है। उसकी पत्नी विंध्यावली कहती है कि पतिदेव, आपका शरीर भी कहाँ है, ये भी भगवान का है, इसके ऊपर भी आपका, इसके ऊपर आपकी मालकी कहाँ से आ गई। अब तो प्रहलाद महाराज प्रकट होके कहते हैं, भगवान आप बड़े दयालु हैं, हम असुर आपकी संपत्ति को अपना मान के मूर्खता करते हैं, अच्छा हुआ आपने वापस ले ली। अब ब्रह्मा जी प्रकट होके कहते हैं, हे भगवान, बलि ने सर्वस्व आपको दे दिया, अब तो इसको ये वरुण फास से मुक्त कर दीजिए। भगवान अब मुस्कुराते कहते हैं, ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज, बलि आज परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, इसने वचन का पालन किया है और बलिदान जो दिया है ये तो जुगा जुग गाया जाएगा। अब बलि महाराज के लिए मैंने बहुत सुंदर सूत्र लोक बनाया है, नीचे वो इंद्र से ज्यादा वैभवशाली है, वहां बलि महाराज रहेंगे और मैं बलि महाराज के दरवाजे के ऊपर चौकीदार बन के रह जाऊंगा, बलि मेरा दर्शन करता रहेगा। और आने वाला मनवंतर जो है, छठा मनवंतर जो अब आएगा, जिसमें सूर्य का पुत्र मनु बनेगा, तब ये बलि महाराज को इंद्र का पद दिया जाएगा। और इसके बाद भगवान ने कहा, हे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज को सत्संग देने के लिए आप भी सूतल लोक में कुछ समय जाकर रहो। तो यहाँ बलि चरित्र में बलि महाराज के वचन पालन करने के ऊपर भगवान की प्रसन्नता, बलि सूतल लोक में चले गए प्रहलाद महाराज, और भगवान विष्णु भी वहां चले गए। अब लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को अपने लोक में नहीं देखा तो बलि के यहाँ ब्राह्मणी बन के गई और प्रार्थना किया कि हे बलि, बलि महाराज आप दानी हैं, मैं ब्राह्मणी कुछ मांगने आई हूँ। बोला, माता मांग लो जो कुछ आपको चाहिए। बोला, संकल्प कर लो। बोला, संकल्प तो पहले भी किया था, अभी भी करता हूँ। बोली, ये क्या चाहिए? बोला, ये पति है मेरा जो आपके दरवाजे पे खड़ा है, इसको वापस वैकुंठ ले जाने के लिए आई हूँ। तो 6 महीना आज जब देवउत्थान एकादशी अब आने वाली है, कार्तिक में आ गई, देवउत्थान एकादशी कार्तिक की होती है, तो 6 महीना पहले के जो देव सो जाते हैं तब बलि महाराज वो वामन देव के वहां होते हैं। दिवाली के दूसरे दिन बलि महाराज की पूजा करते हैं हम, तो ऐसा अभी तक भी बलि महाराज का। और लक्ष्मी ने ऐसे कुछ माल के लोग कहते हैं, लक्ष्मी ने बलि महाराज को जाके वो रक्षा बांध दी, तो रक्षा बंधन में बलि ने वामन देव, बलि ने बलि महाराज को लक्ष्मी ने रक्षा बांधी थी और वहां से भगवान विष्णु को वापस लेके आई थी, ऐसा भी कहीं वर्णन मिलता है। बाकी 1 अध्याय 8वें स्कंद का रहता है। इस 1 अध्याय में सत्यव्रत नाम का एक राजा है जो नहाने के लिए नदी में गया और अंजलि में जल लेकर जब अर्पण करने के लिए दिया तो एक मछली हाथ अंजलि में आ गई, तो मछली को नीचे फेंका तो मछली ने कहा, महाराज मैं आपके शरण में हूं, आप मेरा शरण दीजिए, रक्षण कीजिए। महाराज उसको घर में लेके आए लोटे में, तो बड़ी हो गई तो बाल्टी में डाल दिया, बोलना बंद करो। अरे भैया ठीक है, जितना है ही काफी। बाल्टी से बड़ी हो गई तो बोला, परात में रख दी, परात से बड़ी हो गई, टैंकी में डाल दी तो और बड़ी हो गई। महाराज ये छोटा पड़ रहा है, महाराज ने नदी में डाली तो बड़ी सेतु हो गया। महाराज ने जो हाथ जोड़ के कहा कि आप मछला सामान्य मत से नहीं हो सकते, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्या मेरी सेवा है। तब मत्स्य जो मच्छ था उसने कहा, सुनो प्रियव्रत, अब ब्रह्मा जी को थोड़ी जमाई आएगी, एक छोटी प्रलय होगी, उस वक्त यहाँ चारों ओर जल आ जाएगा और अंधकार हो जाएगा, केवल सप्त ऋषियों से प्रकाश निकलेगा। उस वक्त आप सारे वनस्पतियों के सब बीज लेकर एक नौका आएगी, उसके ऊपर चढ़ जाना। उस जल में मैं मच्छ रूप में वहां प्रकट होऊंगा, मेरे सर के ऊपर सोने का खूंटा लगा होगा और आप अपना नाव मेरे खूंटे से बांध देना, तब मैं आपको प्रलय के जल में से पार ले जाऊंगा। अब थोड़ा समय बीता, ब्रह्मा जी को जमा आई आई और चारों ओर से प्रलय का जल फैल गया, अंधकार मच गया। ऋषियों ने कहा, सप्तऋषियों ने, सत्यव्रत जल्दी करो, सब बीज ले लो, सामने नाव आ रही है, उसके अंदर चढ़े हैं। मच्छ अवतार सामने खड़ा हो गया, मच्छ अवतार के सर के ऊपर लगे हुए खूंटे के अंदर नाव को बांधा है। तब मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत मन राजा को उपदेश दिया है, जो सांख्य दर्शन भक्ति का उपदेश दिया है, उस उपदेश के बाद प्रलय का काल समाप्त हुआ। यही सत्यव्रत जैसे अब जहां हम जी रहे हैं, ये सातवें मनु का शासन चल रहा है, इसका नाम है व्यवस्वत मनु। ये सत्यव्रत ही व्यवस्वत मनु बने हैं, जो मत्स्य अवतार ने उपदेश दिया उसका नाम मत्स्य पुराण हुआ। और यहां आठवां स्कंद पूर्ण आवृति पे पहुंचता है। नवा स्कंद का नाम है ईशानु कथा। ईश का मतलब भगवान, अनु का मतलब अनुगामी, जो भगवान के पीछे चलने वाले। 12 अध्यायों में सूर्य वंश के राजा महाराजाओं का और भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का वर्णन है। 12 अध्यायों में चंद्र वंश में परशुराम जी का और भगवान श्री कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन है। तो सूर्य वंश शुरू होता है तो सूर्य देव से, विवस्वान, उनका बेटा विवस्वत मनु, उनकी पत्नी शारदा, इनको हुए 10 पुत्र। उन 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ और इसके जितने भी राजा हुए, बड़े बड़े प्रतापी, ऐसे ऐसे राजा हुए, कोई धरती के ऊपर गंगा लाए किसके लिए, भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करने के लिए सेवा में आ गया, कहीं हरिश्चंद्र महाराज का चरित्र आता है, तो अद्भुत चरित्रों से भरा हुआ सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन है। पहला सदमनियु पुत्र होता है, रानी कहती है मुझे पुत्री चाहिए, यज्ञ पुत्र के लिए हो रहा है, रानी की इच्छा पुत्री की है, लड़की पैदा हो गई। तो विवस्वत मनु ने कहा, वशिष्ठ जी आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारे को पुत्र चाहिए, तो पुत्री कैसे हो गई। बोला रानी के मन की इच्छा थी, नहीं बोला मेरे को पुत्र चाहिए, वशिष्ठ जी ने अपने योग बल से पुत्री को पुत्र में परिवर्तन कर दिया। ये पहला लिंग परिवर्तन का उदाहरण मिलता है। अब ये सदामन्यु घोड़े के ऊपर चढ़ के इलावर्त वर्ष में चला गया। कल बताया था इलावर्त वर्ष जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, इसमें बीच में जो वर्ष है उसका नाम है इलावर्त वर्ष, वहां शंकर और पार्वती रहते हैं, कोई और पुरुष वहां जा नहीं सकता है। एक बार कुछ ऋषि आए थे, पार्वती अल्प वस्त्र में थी, शंकर जी ने कहा कोई भी यहां पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। अब सदामन्यु पुलावर्त वर्ष में चला गया तो सदामन्यु लड़की हो गया और घोड़ा घोड़ी हो गया। उस वक्त चंद्रमा का पुत्र बुध इस सदामन्यु जो लड़की हो गया था इससे मिला, गंधर्व विवाह किया और इनको एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ पुरुरवा। ये चंद्र वंश शुरू होता है पुरुरवा से। एक राजा सूर्य वंश का आज भी कल्प ग्राम में समाधि में है और एक राजा चंद्र वंश का आज भी समाधि में है। जैसे कलयुग समाप्त होके द्वापर युग शुरू होगा तो ये दोनों क्षत्रियों के वंश फिर दोबारा शुरू करेंगे, ऐसा भागवत में उनका नाम लिखा है। अब लड़का नहीं है तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, कहा अरे हमारा राजकुमार तो लड़की हो गया, शंकर जी के वहां इलावर्त वर्ष में है, तो शंकर जी को प्रार्थना किया। शंकर जी ने कहा मैं क्या, यहाँ तो नेम ऐसा बना रखा है, फिर भी आप आए हैं वशिष्ठ जी, एक महीना लड़का रहेगा एक महीना लड़की रहेगा, तो बोला इससे राज चलेगा नहीं, तो इसके लिए दूसरा पुत्र उनका हुआ। और उसके बाद महाराज शर्याती सूर्य वंश के बहुत बड़े राजा महान हुए हैं। शर्याती के पुत्र आनर्त के नाम से, ये आनर्त देश द्वारका हुआ, उनकी एक बेटी सुकन्या थी, उसको लेकर महाराज चवन ऋषि के आश्रम में गए थे। वहाँ बच्ची छोटी थी, उसने तिनके से किसी जीव ऐसे किसी बिल के अंदर तिनका मारा तो वहाँ से खून निकला, और उसके कारण सब जो राजा की प्रजा, जो राजा के सारे मंत्रीगण और सैनिक थे, उनकी हवा पानी बंद हो गया, सब दुखी हो गए। तो पिता राजा ने पूछा सबसे, अरे भाई किससे, ऋषि के आश्रम में अपराध तो नहीं हो गया? तो सुकन्या कहती है पिताजी मैंने एक तिनका मारा था, खून निकला, हो सकता है कोई ऋषि इस बिल के अंदर किसी और रूप में था। अब अपनी लड़की को लेके चवन ऋषि, उसकी उम्र कोई 100-200 साल पुराना, आंखें पल के नीचे गिरी हुई है, सब झरियां पड़ी हुई है, बाल सफेद चांदी जैसे हैं, उसको हाथ जोड़ के कहता है महाराज आपके आश्रम में मेरी इस कन्या से अपराध हो गया, किसी बिल के अंदर एक तिनके से खून निकल गया, अब आप क्षमा कर दिए। तो चवन जी ने आंख खोले सुकन्या की ओर देखा, महाराज ने देखा कि चवन ऋषि के मन में विवाह करने का विचार है, तो सच महाराज शर्याती ने ऋषि के कोप और शराब से बचने के लिए सुकन्या का विवाह चवन ऋषि के साथ कर दिया। तो सबका हवा पानी बंद हुआ था, वो छूट गया, सब वापस आ गए। चवन ऋषि ने अश्वनी कुमारों को बुलाया जो सूर्य के पुत्र हैं और देवताओं के वैद्य हैं, उनको कहा चवन ऋषि ने सुनो वेदो, आपको देवता अमृत तो पिलाते नहीं है, यज्ञ में तो भाग देते नहीं है, अब आप एक काम करो, मेरे को मैंने विवाह किया है, मेरे को आप नवयुवक बना दो, मैं आपको वचन देता हूं कि देवताओं की श्रेणी में लाके आपको यज्ञ का भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने एक सुंदर बहुत अमृत का कुंड बनाया, और अश्विनी कुमार और चवन ऋषि दोनों उसके अंदर, दो भाई अश्विनी कुमार और एक चवन, तीनों उस कुंड में नहा के जैसे बाहर निकले तो तीनों एक जैसे लग रहे थे। अब सुन कन्या कहती है मैं पतिव्रता हूं, मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा पति कौन है? तो दोनों ने प्रसन्न होकर कहा ये चवन आपका पति है। महाराज शर्याती को कोई यज्ञ कराना था, उसने बोला चवन ऋषि से यज्ञ कराऊंगा। वो उधर जाके देखे तो उसकी अपनी बेटी बहुत नौजवान के साथ बैठी है, नवयुवक के साथ। उसने कहा तो सूर्य वंश की पुत्री तुम्हारा विवाह तो बड़े वृद्ध ऋषि के साथ कराया था, ये नवयुवक कौन है? तो पुत्री मुस्कुरा के कहती है कि पिताजी ये आपका ही जामाता है, अश्विनी कुमार ने इसको बहुत नवयुवक तत्काल बना दिया है। अब जो ये समाचार सुना तो राजा प्रसन्न हो गया, लेकिन आज के लोग भी बड़े खुश हो गए, चवनप्राश चलने लग गया मार्केट में कि लाओ चवनप्राश खाओ और बूढ़े जवान हो जाओ। ये चवन ऋषि के पीछे चवनप्राश की कथा चालू हो गई। अब यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ के अंदर जब भाग देने के लिए अश्विनी कुमारों को भाग दिया जाए, इंद्र ने कहा नहीं मिलेगा, ये हमारे वैद्य है। इंद्र ने हाथ ऊपर किया और चवन ऋषि ने अपने योग से हाथ को उधर अटका दिया, कहा अब हाथ तुम्हारा नीचे तब होगा जब पहले इसको अमृत पिलाओगे। तो ऐसे उन्होंने अपना वचन पूरा किया। आगे चल के इस कुल के अंदर महाराज अम्बरीश का चरित्र आता है, द्वादशी का, एकादशी का व्रत करने। अम्बरीश महाराज का राज तो अन्य स्थान पर था, लेकिन एकादशी के 12 महीनों का व्रत करने के लिए वृंदावन में आए थे, ब्रज में अम्बरीश का एक टीला है, उधर अम्बरीश ने जहाँ आकर व्रत किया था। और दुर्वासा ऋषि अंतिम समय उनके पास आया तो उनको भोजन के लिए कहा, वो जमुना स्नान के लिए चला गया, मुहूर्त निकल रहा था, पंडितों ने कहा महाराज जल पी लीजिए आपके पारण एकादशी का हो जाएगा। और वापस आके दुर्वासा ऋषि कहता है आप अतिथि को खिलाने से पहले खाते हैं, महाराज अपराध हो गया आपसे। और क्रोधित होके जटा से एक बाल नीचे छटका है, उससे एक बहुत बड़ा कृत्य हो गई, लेकिन उस वक्त भगवान का सुदर्शन चक्र आता है, कृत्य को समाप्त कर देता है। और चंकर चक्कर दुर्वासा के पीछे लगता है। दुर्वासा भाग के ब्रह्मा जी के वहां जाते हैं। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। बोला क्या हो गया? बोला हमसे अपराध हो गया, भगवान का चक्कर हमारे पीछे आ रहा है। बोला चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप आगे जाइए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, मैं आपका अंश से उत्पन्न हुआ हूं, मैं आपका ही अंश हूं, मेरे आप रक्षा कीजिए। दुर्वासा कौन है तुम्हारे को पीड़ा दे रहा है? बोला पीछे भगवान का सुदर्शन चक्कर आ रहा है। बोला तो फिर जिसका चक्कर है उसके पास जाइए। तब भगवान विष्णु के पास पहुंचता है। देखो दुर्वासा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वैकुंठ में शरीर में से जाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान को प्रणाम कहा करके कहा मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा देखो दुर्वासा, मैं भक्तों के पराधीन हूं, जिसका अपराध किया है वही क्षमा कर सकता है। मेरा अपराध हो तो भक्त छुड़ा सकते हैं, लेकिन भक्त का अवतार अपराध होता है तो मैं छुड़ा नहीं सकता हूं। इसलिए दुर्वासा आपको क्षमा याचना मांगनी है तो अम्बरीश के पास वापस जाओ। असल में दुर्वासा अम्बरीश की महानता को, भगवान की भक्ति को प्रकट करने के लिए ये ऐसा उनका लीला है। इसमें अब अम्बरीश जी के सामने आया, एक साल बीत गया इस बीच में धरती का, क्योंकि वहां का तो एक दिन होता है, देवताओं का एक दिन रात और इस धरती का एक साल, दिन छह महीने बराबर दिन, छह महीने बराबर रात, इतना अंतर है समय का। अब अम्बरीश जी वहीं खड़े थे, इसने अम्बरीश को प्रणाम करना चाहा। अम्बरीश ने कहा नहीं महाराज, अब आप ब्राह्मण है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा था आपकी। कहा कि सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया है। ऐसे राजा जिसके लिए भगवान का चक्र रक्षा के लिए आया था, दुर्वासा को भोजन करा के संपन्न किया है। आगे इस वंश के अंदर बाहुक नाम का राजा हुआ है, जिसके यहां आगे चल के सगर महाराज हुए। सगर का अर्थ होता है विष के साथ उत्पन्न हुआ, क्योंकि रानी को गर्भ था और राजा की मृत्यु हो गई, तो ऋषि ने कहा कि रानी सती नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर राजा का अंश है, आगे के वंश चलेगा। तो दूसरी रानियों ने कहा फिर इसका बेटा राजा बन हो जाएगा, उसको विष दे दिया। लेकिन महाराज तपस्वी थे, बालक मरा नहीं, लेकिन एक तरफ विष पड़ा था, एक तरफ बालक था, तो उसका नाम सगर हो गया। स का मतलब सात, गर का मतलब विष। और महाराज सगर के आगे चल के दो रानियां थी, एक में से तो एक पुत्र हुआ अंजस वंश, जो तो संसार में फंसना ही नहीं चाहता था, और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र हुए। वो 60,000 पुत्र सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उनने समझा कि ऋषि ने घोड़े को चुराया है। वो ऋषि की ओर क्रोधित होकर गए। ऋषि ने आंखें खोली, 60,000 सगर के पुत्र वहां भस्म हो गए। अब अंजस वंश ने तो आगे तो राज करना नहीं चाहा, उसका बेटा अंशुमान हुआ। अंशुमान अपने ताऊ को ढूंढने और घोड़े को ढूंढने के लिए गया, और जब कपिल आश्रम में पहुंचा तो कपिल देव को प्रार्थना करके प्रणाम किया, घोड़ा देखा। बोला महाराज आप तो तपस्वी है, घोड़ा यहाँ कौन छोड़ के गया है तो हमको मालूम नहीं है, हमारे ताऊ घोड़ों को ढूंढते हुए आए थे, आप बताइए। कपिल देव ने कहा बेटा अपना घोड़ा ले जाइए, आपके ताऊ क्रोध में मेरे सामने आए थे तो वो भस्म हो गए। बोला इनका उद्धार कैसे होगा? तो कपिल देव ने कहा अगर गंगा धरती के ऊपर उतर आए तो फिर आपके पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। अब घोड़ा लाया, यज्ञ पूरा हो गया, महाराज सगर ने अंशुमान को राज दिया, अंशुमान राज किया और अपना बेटे दिलीप को राज दे के तपस्या करने चले गए। लेकिन तपस्या उनका शरीर छूट गया। दिलीप महाराज ने फिर राज अपने बेटे भागीरथ को दिया और दिलीप महाराज तपस्या करने चले गए, लेकिन गंगा नहीं आई। और भागीरथ ने सोचा कि ये सब पहले राज करके फिर तपस्या करने गए थे, मैं अब ऐसे करता हूं, पहले तपस्या करता हूं और गंगा जी को धरती पे लाके फिर मैं राज करूंगा। अब भागीरथ जी गंगोत्री जहां आज है, वहां एक एक शिला आज भी पड़ी है, उसका नाम है भागीरथी शिला। वहां बैठकर तीसरी पीढ़ी ने जब तपस्या की है, तीन पीढ़ियों की तपस्या गंगा धरती पे आई। पहले दिन हमने आपको बताया था तीन पीढ़ियों की माताओं की भक्ति से, पितृकुल की भक्ति से परीक्षित जैसा कोई महात्मा पैदा होता है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत का प्रकट्य होता है। और तीन पूर्ण पीढ़ियों की तपस्या से गंगा धरती के ऊपर आई है। और ऐसे हमारी मान्यता है कि तीन पीढ़ी जब पूरी होंगी कृष्ण भावना अमृत संघ की, तो ये 10,000 साल तक पूरी पृथ्वी के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र गूंजेगा और ये सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रकाशित हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तीन पीढ़ियों की तपस्या से ये संभव होता है। आज भी प्रभुशिला प्रभुपाद जी की कृपा से, आज तो गीता जयंती है, आज के दिन पूरे विश्व भर में नहीं तो भी करोड़ों की संख्या में गीताओं का वितरण होगा और भाग्यशाली जो गीता को आज ग्रहण कर रहे हैं गीता जयंती के दिन, वो तो बड़े भाग्यशाली है। आप देख लीजिए कि 5,000 साल के बाद विश्व के अंदर जब इतिहास लिखने वाले कोई आएंगे और उनको अफ्रीका के नगरों के अंदर राधा कृष्ण के बहुत बड़े विग्रह मिलेंगे, उनकी भाषा में गीता भागवत जो है के पुस्तक मिलेंगे, और कहीं रशिया के नहीं तो सैकड़ों शहरों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद का विग्रह मिलेगा, कहीं अमेरिका में सीताराम लक्ष्मण हनुमान के विग्रह मिलेंगे, विश्व के सारे भाषाओं में गीता भागवत चैतन्य चरितमृत आदि शास्त्र मिलेंगे, ईश उपनिषद आदि, तो उस वक्त इतिहासकार लिखेंगे ये पूरे विश्व के अंदर वैदिक सनातन धर्म चारों ओर फैला हुआ था और ये कार्य करने का सौभाग्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभेशरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के एक व्यक्ति के इतने बड़े दिव्य आंदोलन से पूरे विश्व के अंदर आज वैदिक सनातन धर्म गीता भागवत का प्रचार हो रहा है। कोई दुनिया में एक ऐसा महानगर नहीं है जहां भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा न होती हो, भगवत गीता का उस भाषा में पुस्तक अरबी भाषा में चाइनीज भाषा में भगवत गीता का पुस्तक चाइना में चल रहा है, अरबी भाषा में चल रहा है, दुनिया की सब भाषाओं में ये भगवत गीता का उपलब्धि और भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो अद्भुत कार्य श्री प्रभुपाद जी करके गए हैं। हमको तो निमित्त मात्र बनना है इसमें। गीता तो हमारे पूर्वजों के पास है, सबके घरों में पड़ी होगी, अब आपको दूसरों तक पहुंचाने का ये प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास है तो किसी के विवाह में जाते हो तो वहाँ गिफ्ट में गीता दे दो। पहले कहते थे कन्यादान में गीता होती थी जरूरी, हर माता पिता अपनी कन्यादान में एक गीता का पुस्तक देता था, वो उसके संस्कार की सूचना होती थी। कहीं गिफ्ट में बच्चे के जन्मदिन में जाओ तो अभी पुस्तक के रूप में गीता दे के आओ, मिठाई दे के आओगे, कपड़ा दे के आओगे, महीने डेढ़ महीने दो महीने के बाद पट जाएगा, मिठाई 2 दिन में समाप्त, कपड़ा 2 महीने में समाप्त, लेकिन गीता पीढ़ियों तक उसके पास पड़ी रहेगी, उसको आदर से रखेगा कम से कम, और जब देखेगा याद आएगी कि फलाना आदमी दे के गया था। तो आज ऐसा गीता जयंती का दिन बहुत दिव्य पवित्र एकादशी का दिन है, जिस भाग्यशाली को भगवान सामर्थ्य दिया है, कुछ गीता है 5, 5, 10, 15, 11, 25, हम तो सुबह संकल्प कर रहे थे 108 गीताएं लोगों को आज प्रेरणा दें के ले जाके अपने नए साल में अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले भले सेवकों को उनको उपहार के रूप में दे दो, काम किसी को भी दे दो, आपका बहुत बड़ा, इससे ज्यादा पुण्य विद्या दान से ज्यादा कोई पुण्य नहीं है। और ये भागवत भी आज आप में से किसी एक को जरूर लेके जानी है, एकादशी का दिन है, कल हमने आपको प्रेरणा दी थी, एक के दो होना चाहिए। यहाँ इसके बाद मांधाता महाराज इस कुल में आगे मांधाता महाराज हुए, मथुरा के राजा थे, शोभरी ऋषि उनके आश्रम में उनके पास आया, विवाह का विचार था, शोभरी बूढ़ा था और राजा ने कहा 50 कन्या अंदर है जो आपसे विवाह करे उसके साथ कर लो। अंदर गया तो उसने सोचा मुझे बूढ़ा समझ रहा है, वो एकदम अपने योग बल से नवयुवक हो गया और 50 की 50 कन्याओं ने उसके साथ विवाह कर लिया। फिर शोभरी मुनि तब वो क्यों ऐसे उसके मन में काम भावना आई, क्योंकि शोभरी मुनि जल में जमुना की तपस्या कर रहा था। एक दिन गरुड़ वहां आया और गरुड़ ने मछली खाई। गरुड़ एक ऐसा वैष्णव है, भगवान विष्णु का वाहन है, जिसका भक्षण जो है वो फल फूल सब्जियां नहीं है, वो तो मछली खाता है, गरुड़ तो यही खाता है, नॉन वेजिटेरियन वैष्णव है, विष्णु का भक्त है। तो सोबरी ऋषि ने उसको शराब दे दिया, तुमने यहां मछली खाई है, तुम यहां आएगा तो गरुड़ तेरे प्राण निकल जाएंगे। अब वैष्णव का अपराध हो गया, उसी मछली के बचाने के लिए शराब दिया और मछली और मच्छ को मिलते हुए देखा, उसके मन में काम वासना हुई और मांधाता के यहां जाकर और 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। तो ये तो वैष्णव अपराध के कारण उससे ऐसे हुआ। इसके बाद आगे इस कुल में हरिश्चंद्र महाराज का वर्णन आता है, उसके पुत्र रोहित का वर्णन आता है, फिर महाराज बाहु को, फिर महाराज अज, अज के घर में दशरथ और दशरथ के घर में भगवान श्री रामचंद्र, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण के प्रकट्य का वर्णन आता है। यहाँ 2-3 अध्यायों में सुखदेव महाराज कहते हैं राम का चरित्र तो जुगाजुग से आप महाराज परीक्षित सुनते हुए आ रहे हो, ये तो घर घर में गाया जाता है, फिर भी मैं आपको संक्षेप रूप से राम अवतार की कथा बताता हूँ। महाराज दशरथ की तो अन्य रानियां थी, 3 मुख्य रानियां थी, कोई पुत्र संतान नहीं था। और सुमंत्र ने कहा कि अगर ऋषि श्रृंग पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा तो आपको पुत्र संतान होगा। ऋषि श्रृंग विभांडिक का पुत्र है जिसने स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। महाराज दशरथ की एक पुत्री शांता के साथ उसका विवाह हुआ था। उसने जब अनुष्ठान यज्ञ का किया, एक तरफ अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, वशिष्ठ जी करा रहे थे, एक तरफ ऋषि श्रृंग यज्ञ पुत्रेष्टि करा रहा था। उस वक्त सब देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए, सब देवता ब्रह्मा जी को घेर के बैठ गए कि आपने बड़े बड़े वरदान दे दिए हैं रावण और कुंभकर्ण को, ऋषियों का जीना उन्होंने बहुत खराब कर दिया है, वो तो चारों ओर से अधर्म फैल रहा है। उस वक्त भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और सब देवताओं ने भगवान विष्णु को कहा अब हमारी, हम आपके शरण में है, आपके ऊपर ये धर्म की रक्षा का कार्य है। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं आप तो यहाँ यज्ञ के अंदर अपना भाग लेने आया हो, प्रसाद लेके जाओ, मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपने आप को देने आया हूँ। आज इस यज्ञ कुंड के अंदर से यज्ञ पुरुष के हाथ में कलश के अंदर जो खीर होगी उसमें मैं प्रवेश होके और दशरथ महाराज के घर में 4 रूपों में प्रकट हूंगा। इसको बोलते हैं भगवान और भगवान के भक्त कुछ मांगने नहीं आते हैं, कुछ लेने नहीं आते हैं, वो देने ही आते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उसको मिश्रा जी योग वाले ने कहा था कि स्वामी जी ये धोती पहन के और ये कुर्ता पहन के और ये हाथ से रोटी खाना छोड़ दो, अमेरिका के अंदर तो आपको 3 पीस पहनना चाहिए, कांटे से चमचे से खाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, जब भी कोई भारत से अथवा किसी और देश से अमेरिका में आता है तो या तो विद्या पाने के लिए आता है या तो धन कमाने के लिए आता है, जब वो यहाँ से कुछ लेने आता है तो इन जैसा बनता है, धोती भी तो अपनी धोती छोड़ के और पैंट पहन लेता है, हाथ से खाना छोड़ के कांटा चम्मच ले लेता है। लेकिन मिश्रा जी मैं तो न पढ़ने के लिए इनसे कोई आया हूँ और न ही यहाँ से कुछ धन कमाने आया हूँ, मैं तो इनको सुख शांति का संदेश देने के लिए आया हूँ और मैं देने आया हूँ, इसलिए जो मुझसे लेगा उसको मेरे जैसा होने पड़ेगा, मैं क्यों इन जैसा हो जाऊँ। और प्रभुपाद ने अपने वेशभूषा को नहीं बदला और प्रभाव ये हुआ कि आज नहीं तो लाखों की संख्या में विश्व भर में लोगों को दिव्य गोलोक का जो वेश है धोती और माता जी के लिए साड़ी, ये कोई भारतीय वेश नहीं है, ये देवताओं का वेश है, ये गोलोक का वैकुंठ का वेश है। आप कोई भी घर में चित्र पड़ा होगा तो नारी साड़ी में दिखेगी और पुरुष धोती में दिखेगा, तो ये तो आध्यात्मिक वेश है जिसके अंदर एक मुख्य संदेश है कि ये वैराग का वेश है। ये मानव इसलिए पहनता है कि उसको हमेशा याद आता है कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, धोती में कोई जेब नहीं होता है, साड़ी में कोई जेब नहीं होता है, दोनों में कोई जेब नहीं है, दोनों के अंदर बहुत भारी संदेश है कि जब तक संसार में रहोगे निर्लेप होके रहो, यहाँ से किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जी के इस भाव से हम एक बार इंग्लैंड में उतरे तो पत्रकारों ने कहा आपका देश गरीब, उससे आप क्या संदेश हमारे लिए लाए हो। प्रभुपाद ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आपके पूर्वज बर्तानिया के ब्रिटिश हमारे भारत से सब जो बहुमूल्य चीजें उठा के लेके चले गए थे ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक चीज वो भूल के चले गए थे, वो मैं आपको घर में होम डिलीवरी देने आया हूँ। उन्होंने हमारे सनातन धर्म के अंदर जो सुख का साधन, भगवत प्रेम प्राप्ति का साधन, भक्ति को भूल के आ गए थे। मैं आपके देश में ये संदेश देने के लिए आया हूँ। एक बार प्रभुपाद जी घूम रहे थे इंग्लैंड के एक बड़े बगीचे में, तो एक पेड़ से कहा एक सेवक को के दांतन लाओ, तो वो दांतन का टुकड़ा काटा तो वहां का सेवक ब्रिटिश वाला कहा दांत क्यों, दांतन क्यों काटा, बेचारा डर गया, अमेरिकन था। प्रभुपाद जी मुड़ के देख अपना लाठी जो हाथ में थी वो धरती में लगा के बोला तुम सारे भारत से हमारा सब कुछ कौन ये हीरो तक लेके आ गए और हमने आपका एक टुकड़ा पेड़ का तोड़ा इसलिए इतना शोर मचा रहे हो। वो बेचारा डर के भाग गया वहां से। प्रभुपाद ने उसको वो सीधा बोला कि तुम सारा देश हमारा लूट के आए और हमने इतना तुम्हारा टुकड़ा एक ले लिया है दांतन के लिए और तुम चिल्ला रहे। प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन के अंदर बैठे थे अपने मंदिर के पीछे, उनका घर है और पीछे बगीचे में, तो उस दिन एक भक्त आया इंग्लैंड से और कहा ये सुबह भगवान को राज बाल भोग में 4:30 बजे रसगुल्ला भगवान को भोग लगा है और ये प्रभुपाद जी अब मैं आपके लिए वहां से महाप्रसाद लेकर आया। तो प्रभुपाद जो बैठे थे उनको कहा कि देखो जब मोतीलाल नेहरू वकील थे इलाहाबाद में, तो जब आम मुंशी 100 रुपये में मिलता था तो उसने 500 रुपया देके एक अंग्रेज को अपना मुंशी रखा था। बोला ऐसा खर्चा क्यों किया, बोला अंग्रेज को दिखाने के लिए कि वो मेरा नौकर है। बोला इतना खर्चा करके एक नौकर रखा था लेकिन मैं 1 रुपया इनको नहीं देता हूं और ये देखो 1 नहीं 1000 हूं, रसगुल्ला पकता है इंग्लैंड में और शाम को मेरे पास प्रसाद के लिए आता है। देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, वो पैसा दे के अंग्रेज से सेवा लेकर रहे थे और हमने भगवान की सेवा में लगाया है तो भगवान की सेवा में आओ, इतने हजारों लोग सेवा में लगे हुए और वहां से सब कुछ वस्तु यहाँ अपने आप वृंदावन तक पहुंचा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो देता है ना, वो देने वाले का हमेशा हाथ ऊपर होता है, लेने वाला कितना भी ले हाथ तो फिर भी नीचे रहेगा। तो यहाँ भगवान ने अपने आप को वसुदेव के अंश से रामचंद्र, संकृष्ण के अंश से लक्ष्मण हुए और अनिरुद्ध प्रद्युम्न भरत और शत्रुघ्न हुए। इसके बाद राम कथा सबको मालूम है, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना और सामान्य लोगों को एक राज धर्म, राजा कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए आज्ञाकारी, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, ये मर्यादा की शिक्षा देने के लिए रामचंद्र के अवतार का वर्णन है। इस सूर्य वंश में आगे एक निमि महाराज का वर्णन आता है। इक्ष्वाकु महाराज के वंश के अंदर तो रामचंद्र है, आगे निमि महाराज एक दिन अपने पुरोहित वशिष्ठ को यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की। वशिष्ठ को उस वक्त देवताओं ने इंद्रलोक में यज्ञ के लिए बुलाया था, तो वशिष्ठ जी तो चले गए देवताओं का यज्ञ कराने के लिए और महाराज निमि ने कहा कि श्वास के ऊपर विश्वास नहीं है, कभी भी निकल के चला जाए। अच्छा यज्ञ करने की प्रेरणा आई है तो तत्काल करना चाहिए। उसने दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करा दिया। अब यज्ञ पूरा हुआ तब तक वशिष्ठ वापस आए, आप हमारे यजमान हैं, आपको हमसे यज्ञ कराना चाहिए था, आपने यज्ञ दूसरे ब्राह्मण से क्यों कराया, हम आपको शराब देते हैं आपका शरीर छूट जाए। निमि महाराज कहते हैं महाराज आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, हमारा आपको प्रणाम है, आपको मैंने पहले कहा था मेरा यज्ञ कराओ, तो हम यजमान हैं, पहले हमारा हित करना चाहिए, आप देवताओं के वहां यज्ञ कराने के लिए चले गए थे तो मैं आपको भी शराब देता हूं कि आपका शरीर छूट जाए। अब वशिष्ठ जी का शरीर छूट गया, वरुण और मित्र उन्होंने उनके अंश को संभाल के रखा जिससे वशिष्ठ जी का दोबारा पुनः प्रकट हुआ। लेकिन निमि महाराज को कहा कि आप वापस शरीर धारण करो, बोला मैं शरीर में नहीं रहना चाहता हूं। उनके शरीर को सुगंधित औषधियों वाले तेल में रखा गया और कहा मैं शरीर में नहीं रहना चाहता हूं, इसलिए उनका नाम हो गया विदेहराज। फिर उनके शरीर का मंथन किया तो उनकी राजधानी का नाम हो गया मिथिला और उसमें से जो प्रकट हुआ पुरुष उसका नाम हुआ जनक। तो महाराज निमि पहले जनक है, विदेह राज है और मिथिला की स्थापना की, अयोध्या की स्थापना इक्ष्वाकु ने की और मिथिला की स्थापना महाराज निमि ने की। उस महाराज निमि के 21वीं पीढ़ी के वंश में सीता माता के पिता क्षीरध्वज जनक हुए हैं और इस जनक के यहाँ सीता माता का प्रकट्य हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी नहीं है सीता, वो रजवीर्य से पैदा नहीं हुई है। मैं यज्ञ के लिए धरती का शोधन कर रहा था, हल के नीचे हराई को जो लोहे का टुकड़ा है उसको सीत कहते हैं, वो किसी नीचे चीज को लगा और मट के अंदर से ये मूर्ति प्रकट हुई है, तो इसका नाम मैंने सीता रखा है। और विदेहराज इसलिए कहते हैं कि जनक नंदनी, विदेह नंदनी, विदेहराज नंदनी सीता, तो सीता का ऐसे प्रकट्य होता है। और निमि महाराज का यह वंश, सूर्य वंश की कथा यहाँ विराम पे आती है। चंद्रवंश का अभी आपको संकेत दिया था, चंद्रवंश चंद्रमा से शुरू होना चाहिए। चंद्रमा अत्रि का पुत्र है और अत्रि सप्त ऋषियों में एक ऋषि है जो ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो ब्रह्मा का विष्णु के नाभि से निकला ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र अत्रि, अत्रि का पुत्र चंद्रमा जो ब्रह्मा जी के अंश से आया है। और चंद्रमा का पुत्र बुध जो बृहस्पति की पत्नी से उत्पन्न हुआ है और बुध का गंधर्व विवाह हुआ इलावर्त वर्ष में सदामन्यु लड़की से जिससे हुआ पुरुर्वा। एक दिन पुरुर्वा महाराज स्वर्ग में चले गए थे, सब देवताओं को तो आदर दिया लेकिन कामदेव खड़ा था उसकी तरफ देखा नहीं, तो कामदेव ने कहा ठीक है तुम्हारे को मैं इस धरती के ऊपर परेशान करने आ जाऊंगा। अब एक अप्सरा उर्वशी, ये अप्सरा उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, ये भगवान नर नारायण ने अपनी जांग से प्रकट करके इंद्र के भेजे हुए कामदेव को, जो नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए गया था, उसको कहा कि इंद्र को उपहार दे देना। कामदेव तो कुछ बिगाड़ नहीं सका भगवान नर नारायण का, लेकिन उन्होंने अपनी जांग से अप्सरा निकाली उर्वशी, तो ये उर्वशी भगवान से अंग के अंग से निकली है, क्योंकि इनके वंश में आगे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होगा। तो उर्वशी को एक दिन श्राप हुआ कि किसी मानव से विवाह तुम्हारा करना होगा, तुम धरती के ऊपर चली जाओ। उस वक्त नारद ने कहा उर्वशी इस वक्त पुरुर्वा एक ही आपके योग्य पुरुष है, उर्वशी का और पुरुर्वा का विवाह हो गया। उर्वशी ने कहा देखो मैं देवलोक की हूं, मेरे तीन शर्त हैं, अगर पालन करोगे तो रहोगी, ना होगी नहीं तो चली जाऊंगी। पहला शर्त यह है कि मैं केवल घी खाऊंगी, इससे लगता है कि देवता केवल घी खाते हैं और हमारे भी बड़े बुजुर्ग पुराने घी खाते थे तो देवता जैसे थे, जब से तेल खाया तब से तब सबका तेल निकल गया, अभी तो किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं रह गया। तो इससे एक संकेत मिलता है कि देवता के वहां केवल घी चलता है। दो भेड़ के बच्चे लाई हूं, इसकी रक्षा करनी है। और तीसरा शर्त यह है किसी वक्त प्रकाश में आपको निर्वस्त्र में ना देखूं। अब उर्वशी के साथ रह रहे इंद्र ने कहा उर्वशी कहां चली गई, बोला तो वो पुरुर्वा के साथ विवाह करके धरती पे बैठी है। अरे गंधर्व जाओ उसको, उर्वशी को वापस लाओ। अब गंधर्व ने आके दो भेड़ के बच्चे चुरा लिए। अब उर्वशी कहती है तुम मेरे भेड़ के बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, तो लड़की की तरह चूड़ी पहन के बैठी हो, कैसे क्षत्रिय हो। अब इसको क्रोध आया, उठा और बाहर उठा तो गंधर्व ने प्रकाश कर दिया और उर्वशी ने निर्वस्त्र देख लिया और उर्वशी चली गई। अब तो ये बहुत दुखी हुआ, उर्वशी को ढूंढ रहा था पूरे धरती के ऊपर। कुरुक्षेत्र में कुछ पांच पुरुषों के संग उर्वशी को देखा, उर्वशी को बड़ी प्रार्थना की। उर्वशी ने कहा साल में एक बार यहीं आपसे मैं मिलूंगी। छह बार मिलन हुआ और छह पुत्र उर्वशी और पुरुर्वा के हुए। उसके बाद उर्वशी ने एक अग्नि स्थली और स्त्री दे दी उसको, बोला ये मेरे जैसी है, गंधर्व ने तुम्हें दी है। और पुरुर्वा उसके बाद चला गया काम कर्म कांड करके पितृलोक में, और यहाँ छह पुत्रों में दो का वंश चला, एक विजय और एक अनु। विजय के वंश में आगे जानू ऋषि हुए हैं। जानू ऋषि वो जिसने जब गंगा को पी लिया था, भागीरथ जब गंगा ले जा रहा था तो जानू ऋषि गंगा को पी गया। अच्छा, मैंने आपको गंगा अवतर की कथा, अवतरण की कथा नहीं बताई। ये सूर्य वंश के राजाओं में आता है भागीरथ, बताई ना अभी भागीरथ की कथा तो बताई, तो गंगा तो धरती पे आ गई। भागीरथ ही गंगा का नाम है, जब गंगोत्री से उतर के नीचे आती है, जब अलकनंदा में मिलती है आके, तो उनका नाम गंगा हो जाता है, उससे पहले भागीरथी है और फिर सारे का नाम गंगा है। और जब बंगाल में गंगा जाती है उसका नाम जाह्नवी है, क्योंकि जानू ऋषि गंगा को पी गए थे, फिर उसको प्रकट किया तो उसकी पुत्री कहलाई। तो जानू ऋषि के वंश में आगे एक महाराज गाधी हुए, गाधी महाराज की पास एक उनकी पुत्री थी सत्यवती, उसको रीचक ऋषि विवाह करने के लिए आए। तो महाराज ने कहा ये ऋषि कहां मेरे राजकुमारी को पाल पाएगा, कहा 1000 घोड़े सब काले होने चाहिए, एक कान सफेद होना चाहिए, बोले इतने मिलेंगे नहीं तो विवाह होगा नहीं। और ये ऋषि रीचक ने जाके वरुण देवता को प्रसन्न किया प्रार्थना करके, और 1000 घोड़ा लेके दरवाजे में खड़ा कर दिया, सत्यवती के साथ रीचक ऋषि का विवाह हो गया। एक दिन गाधी पत्नी कहती है बेटी तुम अपने पति को कहो कि हमारे को भी पुत्र संतान, आपका भाई हो, आपके घर में भी पुत्र हो तो हम भी देखें हमारा निवासा। तो रीचक को प्रार्थना की, रीचक ने सुबह पूजा करके 2 खीर चारू बनाई, बोला ये एक तुम्हारी माता के लिए और एक तुम्हारे लिए। वो स्नान करने के लिए चला गया नदी पे, माँ के मन में आया अपनी पत्नी के लिए अच्छी बनाई होगी, सास के लिए कौन अच्छी बनाता है, तो बेटी तुम ऐसे करो, तुम तो फिर भी यहाँ रह रही हो, दोबारा भी बन जाएगी, मेरे को आपकी दे दो। वो अदली बदली करके खीर खा ली। ऋषि रीचक वापस लौट के आया तो कहता है अन्याय हो गया, सत्यवती तुमने बड़ा अन्याय कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने ब्राह्मण बालक का मंत्र पढ़ा था और मेरी सास के लिए क्षत्रिय बालक का मंत्र पढ़ा था, क्योंकि वो गाधी महाराज है उनको क्षत्रिय पुत्र चाहिए, अब उल्टा हो गया, तेरे घर में क्रूर क्षत्रिय पैदा होगा और उसके घर में ब्राह्मण हो जाएगा। अब तो सत्यवती कहती है मैं क्या करूं, माता की आज्ञा का पालन करना भी वेद का धर्म है, मेरी माता ने कहा मैंने मान लिया। बोला ठीक है मैं आपको क्षमा कर दूंगा, आपका बेटा तो धर्मात्मा होगा लेकिन आपका पोता बड़ा क्रूर होगा, तो आगे चल के रीचक के घर में पहले पैदा हुआ जमदग्नि, जिसका विवाह हुआ रेणुका से, और उसके 4 पुत्रों में सबसे छोटा परशुराम हुआ, जो क्षत्रिय के फरसा उठा के पूरी धरती के ऊपर घूमा। और दूसरे तरफ जो उसको ब्राह्मण के बजाय का जो चारू दे दिया, वह विश्वामित्र पैदा हुआ, हुआ क्षत्रिय लेकिन बाद में ब्रह्मर्षि बन के ब्राह्मण बन गया। तो ये यहाँ परिवर्तन का वर्णन है, परशुराम के अवतार का वर्णन है। अब परशुराम जब प्रकट हो गया, महाराज जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी और सहस्र बाहु कार्तवीक अर्जुन एक दिन उनके पास आया और आतिथ्य के बाद गाय को जबरदस्ती छीन के ले जा रहा था, और परशुराम ने जाकर उसके 1000 हाथ काट दिए। सहस्र बाहु ये वो है जिसने रावण को बंदी बनाया था, दो ने रावण को बंदी बनाया था, एक तो बाली ने अपनी काक्ष में दबा के रखा था और दूसरा कार्तवीर अर्जुन सहस्र बाहु ने नर्मदा के जल को रोक के रावण की सामग्री को बहा दिया और युद्ध के लिए आया तो बंदी बना दिया। रावण का नाना पुलस्त का पोत्र है, वो आया और अपने पोते को छुड़ा के गया। सो सहस्र बाहु की सब बाजू काट दी, मार दिया, परशुराम ने गाय वापस लाया, लेकिन पिता ने कहा महाराज आपने राजा का वध किया है बेटा, आपको तपस्या करने जाना चाहिए। तपस्या करके आया तो एक दिन उनके पुत्र आए, गाय को भी ले गए और जमदग्नि का गर्दन काट के ले गए। माँ ने चिल्लाया हे राम, परशुराम जी आया, बोला माँ मैं आपका पिता का गर्दन अभी लाता हूँ, उसके बाद अपन इसका तर्पण करेंगे। जाके पूरे पुत्रों का वंश का नाश किया और वापस पिताजी का सर लेके आए, और उसके बाद तो 21 बार इस धरती के ऊपर क्षत्रियों का, अतिताई क्षत्रियों का संहार करके ये पृथ्वी पूरी कश्यप को दान देकर और महेंद्र पर्वत के ऊपर रह रहे जमीन समुद्र से जमीन ले ली, जो केरल का पट्टी है ये परशुराम का क्षेत्र हो गया बाद में। और फिर परशुराम ने राम अवतार में अपना तेज राम जी को दे दिया, जब विष्णु धनुष के ऊपर भगवान राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई थी। तो आगे चल के दूसरा वंश चला ययाति से, अनु के वहां ययाति हुआ, और महाराज ययाति इस कथा मेरे ख्याल में समय तो हमारा इस वंश में पूरा तो करना है, एक राजा थे विश्वपर्वा, उसकी बेटी थी, हाँ शुक्राचार्य की बेटी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और महाराज विश्वपर्वा की पुत्री जो है वो समृष्टा, दोनों सहेलियां थी और सब सहेलियों के साथ सरोवर में नहा रही थी और शंकर जी नंदी के ऊपर आ रहे थे तो लज्जा में जल्दी बाहर निकली, कपड़े एक दूसरे के बदली हो गए। अब ब्राह्मणी ने क्षत्रिय के कपड़े पहन लिए तो समृष्टा क्रोध करने लगी कि तुम ब्राह्मण हमारी भिक्षा और दान के ऊपर जीते हो, तुम हमारे राजाओं के कपड़े पहनने का अधिकार कैसे, तुम्हारे साहस कैसे हुआ। देवयानी को कहा कि तुम तो यज्ञ के अंदर रखे हुए घी को कौवा उठाता, ऐसे तुम मेरे कपड़े उठा के चली गई। अब उसको क्रोध आया, राजकुमारी तो थी, इस ऋषि पुत्री के सारे कपड़े उतार के एक कुएं में डाल दिया, ये बेचारी कुएं में गिर गई। महाराज ययाति प्यासा हुआ जंगल से आता था, आ रहा था कुएं के अंदर जल के लिए, नीचे कपड़ा देखा तो एक नंगर नारी को देखा, उस ऊपर कपड़ा डाला, देवयानी ने कपड़े को ढक दिया और फिर हाथ नीचे करके ययाति ने देवयानी को बाहर निकाला। अब देवयानी हाथ को पकड़ के कहती है महाराज आपने पानी ग्रहण तो कर ही लिया है, वैसे ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि कच्छ जो बृहस्पति का पुत्र है उसने मेरे को शराप दिया है कि मेरे को ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जाती हूं अपने घर में अपने पिता को कहती हूं आप मुझसे विवाह करो। और उसने देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को कहा कि आपके राजा की पुत्री ने मेरे को ऐसे कुएं में डाल दिया था। अब तो क्रोध में शुक्राचार्य गए, महाराज विश्वपर्वा ने कहा ये तो बच्चियों का आपस में सहेलियां थी, इनका झगड़ा है। बोला ठीक है फिर अब दंड तुम्हारी बच्ची को जो मेरी बच्ची कहेगी वो देना पड़ेगा। बोला जैसे कहेगी वैसे करेंगे। तो कहती है देवयानी मेरा विवाह होगा महाराज ययाति के साथ और ये समृष्टा मेरी दासी होके जाएगी, और दासी होके गई। और शुक्राचार्य ने कहा तुम्हारे को समृष्टा से कोई संतान उत्पन्न नहीं करना है। आगे चल के देवयानी से तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई और समृष्टा ने भी एक दिन कहा कि महाराज आप क्षत्रिय हैं, मैं दासी होके आई हूं, हूं तो राजा की कन्या, आप पुत्र संतान हमको दे। तीन पुत्रों की समृष्टा को भी तीन पुत्र हो गए। अब ये जब पता लगा तो देवयानी क्रोध में घर आई, शुक्राचार्य को क्रोध आया, उसने कहा तुमको कहा था पुत्र नहीं उत्पन्न कर, तुम बूढ़े हो जाओ। और ययाति बूढ़ा हो गया। अब ययाति कहता है आपकी पुत्री के साथ विवाह है, मैं अभी तक राज में भोग करना चाहता था। बोला ठीक है आपका कोई पुत्र अगर आपको अपनी आयु देगा तो आप नवयुवक हो जाओगे। तो यदु पुत्र हुआ, उसको बड़ा पुत्र यदु का आपकी आयु दो। नहीं मेरे वंश में आगे भगवान को प्रकट होना है, मैं समय नहीं गंवाऊंगा। दो दूसरों को कहा, उन्होंने कहा हम तो पिताजी नहीं आयु दे। छोटा पुरु जो था, पुरु ने कहा पिताजी आपको मांगना पड़ रहा है, हमें लज्जा आ रही है, पुत्र पहले नंबर का वो पिता के मन को देखकर उसको पहले ही दे दे, मेरी आयु ले लो। पुरु ने आयु दे दी। ये याति नौजवान हो गया, कुछ समय भोग किया। एक दिन अपनी पत्नी को कहता था एक बकरे ने एक बकरी को कुएं से निकाला, बकरा बकरी सुखी रह रहे थे, एक बकरी और आ गई और दो बकरियों में झगड़ा हुआ, अपनी सारी कथा बता दी और फिर कहा कि अब छोड़ो भोग को, चलो त्याग करते हैं। तो देवयानी कहा जब कुएं से निकाला था भवसागर से निकालना, वो तपस्या करने के लिए चले गए। यहां से आगे यदु के वंश में एक यदु वंश चला और एक पुरु का वंश चला। तो पुरु के वंश में आगे चल के महाराज दुष्यंत हुए, जिसका विवाह कणद ऋषि के आश्रम में शकुंतला से के साथ हुआ, जो विश्वामित्र की पुत्री थी, और जिनका बेटा भरत हुआ, जिसके नाम से भगवत गीता में अर्जुन को भरत श्रेष्ठ कहते हैं। भरत इस महाराज भरत बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ और भरत को अपने तीन रानियों से पुत्र नहीं हुआ तो देवताओं ने भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। उस भरद्वाज के पुत्र से आगे चल के महाराज शांतनु हुए, शांतनु के भीष्म हुए और सत्यवती से फिर चित्रव्रत और चित्रवीर और चित्रंगद हुए और उनके संतान नहीं हुआ तो व्यास देव से आगे चल के पांडु धृतराष्ट्र और विदुर हुआ और फिर पांडु के पांच पुत्र युधिष्ठिर महाराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव हुए और दूसरी तरफ कौरवों के दुर्योधन आदि पुत्र हुए। फिर पांडवों के पुत्रों का वर्णन है, ये तो पुरु वंश हो गया, इसलिए पुरु वंश को आगे कुरु वंश पुरु वंश कहते हैं। दूसरे तरफ यदु महाराज का वंश चलाए। यदु के वंश में आगे चल के एक महाराज देवमीड़ हुआ और महाराज देवमीड़ को दो रानियां थी, एक क्षत्रिय रानी थी उसमें से सूरसेन पुत्र हुआ, दूसरी वैश्य रानी थी उससे पर्जन्य पुत्र हुआ। जो सूरसेन क्षत्रिय रानी से पुत्र हुआ उसके आगे चल के वासुदेव आदि पुत्र हुए, और जो जो पर्जन्य पुत्र था वैश्य से उसके आगे चल के पांच पुत्र हुए, जिसमें बीच वाला नंद बाबा है, उपनंदा, सुनंदा, नंदन, ये पांच भाई हुए। तो अब यहां कहते हैं कि वसुदेव का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ, और फिर आगे चल के देवकी और वसुदेव के यहां कृष्ण बलराम का रोहिणी के साथ, और भी अन्य रानी थी उसमें मुख्य रोहिणी और देवकी थी, तो रोहिणी के यहां बलराम जी का प्रकट हुआ और देवकी के वहां भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। यह नवा स्कंद पूर्णाहुति के ऊपर पहुंचता है। दसम स्कंद, नवे स्कंद में ईशानु कथा है, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हृदय के अंदर कोई भी वासना नहीं रहती और हृदय इतना शीतल हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दसम स्कंद का है वो हृदय में धारण करने के योग्य बन जाता है। तो नौ स्कंद व्यास देव ने कहा है अच्छी तरह से समझेंगे तो भगवान क्या है ये समझ में आएगा, तब दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला धाम को परम सत्य के रूप में परख के समझ के अपने जीवन में उतारना सरल हो जाएगा। जैसे नौ महीना बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब पक्का पैदा होता है, ऐसे नौ स्कंद ठीक तरह समझेगा उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, दसम स्कंद समझ में आएगा। अब दसम स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं सोम सूर्य वंश का तो विस्तार से आपने वर्णन किया, लेकिन मेरा रक्षक, मेरे पितामह अर्जुन का रक्षक भगवान श्री कृष्ण का वो दो श्लोकों में वर्णन करके आपने पूरा बता दिया, मैं विस्तार से आप जैसा सुनाने वाला मिले। निवृत्त तृषय उपगी माना भव औषधि श्रोत मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादान पशु गणा। आप जैसा सुखदेव महाराज कोई हरि कथा सुनाने वाला मिले जो भव के रोग की औषधि है, ये महात्माओं को आनंद देती है, संसार जिज्ञासु को सुख देती है, लेकिन जो कामी है उनको भी आनंद देती है। कौन ऐसा मूर्ख है जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा। वैसे तो औषधि का अर्थ दवा होता है, क्या ये दवा कड़वी है भगवान की कथा, बोला इसको कान के द्वारा पी जाती है, बड़ी मधुर है, लेकिन पिलाने वाला कोई सुखदेव महाराज जैसा निवृत्त तृष्य जिसके मन में कोई संसार के भोग की या कुछ पाने की कामना नहीं हो उसके मुख से जब कथा का प्रवाह होता है तो हृदय द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में जो संसार की मूर्तियां बनी होती हैं वो पिघल के निकल जाती हैं और भागवत से भगवान राधा गोविंद की मूर्ति प्रकट हो जाती है, यही भागवत का उद्देश्य है। नहीं तो कथा किसी ऐसे के मुख से सुनी जाए जिसको भगवान श्री कृष्ण की भगवता के ऊपर विश्वास नहीं है, कृष्ण की भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ऐसे के मुख से कथा ऐसा है जैसे पौष्टिक पदार्थ दूध के अंदर सर्प विष डाल दे तो वो घातक हो जाता है। ऐसे कथा करने वाले जिनको श्री कृष्ण की भगवता और उसकी भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है वो कथा करके किसी के हृदय में भगवान को स्थापित नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म कहने वाला ब्रह्म में तो डाल सकते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी कथा करने से पाश्चात्य लोगों के देशों के लोग धोती पहन के चोटी और सौ रख के पुरुष और साड़ी पहन के तिलक लगा के आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो हजारों की संख्या में कथा नहीं लाखों की कथा हो रही है भागवत की पूरे भारत में, कोई एक भी चरित्र किसी का परिवर्तन होता हुआ दिखता नहीं है। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की वाणी हृदय में परिवर्तन करती है और मान उसका समय बीत जाता है पता नहीं लगता है और हृदय में परिवर्तन हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण के वाणी भगवत गीता और उनकी लीला भागवत के पुस्तकों के अंदर प्रभुपाद जी की वाणी उनके तात्पर्य के रूप में है, किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति उसके लिए सुलभ हो जाती है, अकेले के लिए नहीं, कुल में सात पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। ये बहुत बड़ा दिव्य साहित्य है जो हर भाग्यशाली के पास होना चाहिए। अब सुखदेव महाराज कहते हैं कि कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछने वाला भाग्यशाली है, बोलने वाले का कल्याण होता है, सुनने वाले का कल्याण होता है, आयोजन करके प्रश्न पूछने वाले का कल्याण होता है। और सुखदेव महाराज को परीक्षित कहते हैं, मैं ये सुनना चाहता हूं, आपने बताया कि देवकी के उदर में बलराम आए और फिर रोहिणी के बेटे के रूप में पैदा हुए, तो एक ही शरीर से दो माओं का बेटा कैसे बना? और भगवान श्री कृष्ण, उनका जन्म हुआ मथुरा में, वो गोकुल क्यों चले गए? और अगर गोकुल चले गए तो गोकुल में क्या किया, और गोकुल के बाद वो मथुरा गए तो उधर क्या किया, और द्वारका में उनकी क्या लीलाएं हैं? मैं ये सब आपसे सुनना चाहता हूं, आप कृपा करके मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। ये व्यास समास व्यास बहुत विस्तार के साथ सुनाइए। तो यहां परीक्षा लेने के लिए सुखदेव महाराज कहते, चौथा दिन पूरा हो रहा है परीक्षित, आपने जलपान नहीं किया है, थोड़ा सा जलपान कर लो फिर कथा सुनो। परीक्षित कहता है, महाराज एक दिन प्यास लगी थी और मैंने ऋषि का अपमान कर दिया था, तब से मैंने जल नहीं पिया है, और आपके मुख से अमृत की जो ये कथा की धारा बह रही है, इस गंगा से मैं तृप्त ही नहीं हो रहा हूं, प्यास कहां लगी है, भूख किसको याद है, आप कथा सुनाइए। हमने आपको कहा था या नहीं कहा था, लेकिन आपको अभी ये सावधानी से समझाने के लिए बता देते हैं, परीक्षित को क्रोध आना संभव नहीं है, वो ऋषि का अपमान करे ये भी संभव नहीं है। भगवान को भागवत का अवतार करना था, इसलिए ये लीला ऐसे घटित हुई। कहीं कथाकार आपको सुनाए कि परीक्षित के सर के ऊपर सोने के मुकुट के अंदर कलयुग ने प्रवेश किया, तो नहीं मानना, ये सही नहीं है। जिस कलयुग को शरण में आए को जीवन दान दिया था परीक्षित महाराज ने, उसके सामने कलयुग साहस नहीं कर सकता है मुकुट में प्रवेश करने का, इसको किसी आचार्य ने नहीं माना है। कथाकार कुछ भी कह दे, लेकिन शास्त्र में प्रमाण नहीं है। शास्त्र कहता है न तो परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव हो सकता है और न ही क्रोध आ सकता है। ये तो भगवान की योग माया ने कल भागवत के अवतार की भूमिका बनाई है। जैसे अभी हम कथा सुनेंगे, देवकी और वसुदेव को जेल में जाना पड़ेगा, छह छह पुत्रों का वध होगा, ये भी कृष्ण के अवतार की भूमिका है, नहीं तो भगवान की माता पिता को जेल में कोई कैसे डाल सकता है। तो कभी मत ये मानना कि परीक्षित जैसे महान भागवत पुरुष के ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ सकता है। कलयुग का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? छोटे ब्राह्मण बच्चे सम्यक के बेटे श्रृंगी के ऊपर, जिसने बल तो था लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं किया, अपने ऋषि तेज को एक क्षत्रिय तेज के विनाश में लगा दिया, तब से क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच में विभाजन हो गया। आगे चल के क्षत्रियों ने वैश्यों के साथ अन्याय किया, तो फिर जैन धर्म आ गया, और फिर वैश्यों ने नीच जाति से अन्याय किया तो बौद्ध धर्म आ गया, बुद्ध आ गया। ऐसे ये पूरे सनातन धर्म में विभाजन कलियुग ने जब प्रभाव डाला है ऊंच जातियों के ऊपर, तब ऐसे हुआ है। परीक्षित को भगवान रक्षा करने वाले हों, उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कथा एकदम, सुखदेव महाराज कहते हैं पृथ्वी के ऊपर आतिथेय राजाओं इतने कंस के साथ, जरासंध, शिशुपाल, दंडवकर, अघासुर, बकासुर, चाण और मुष्टिक इतने बढ़ गए कि पृथ्वी उनके भार से दुखी होके अपने पुत्र ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा, बहुत बड़ा संकट है, अत्याचारी बढ़ गए हैं, पृथ्वी ने अपना आदि देवक रूप गाय का रूप धारण कर लिया, पृथ्वी का देवता के बीच में रूप गाय का है। सामान्य भौतिक रूप तो धरती जिसके ऊपर पर्वत है, नदियां हैं, ये पृथ्वी है, लेकिन देवताओं के बीच में पृथ्वी गाय का सहनशीलता का स्वरूप है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी विष्णु पत्नी है, उसका नाम है भूदेवी। एक श्री देवी है, एक भूदेवी है। तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी, ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ ले लिया, नारद को ले लिया, चंद्र को ले लिया, इंद्र को ले लिया, ये सब क्षीर सागर के ऊपर जाके पुरुष सुक्त से भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में कहा, ब्रह्मा जी मैं पृथ्वी जी के संकट को अच्छी तरह से समझता हूँ, जानता हूँ, अब आप सब देवताओं को कहो श्री को प्रिय करने के लिए मेरे संग में राधिका आएगी। ये देवता यदुवंश में, मधुवंश में, भोज वंश में और वृष्णि वंश में जाके अपने स्त्रियों के साथ प्रकट हो और समय आने के ऊपर मैं प्रकट हो जाऊंगा। देवता ने सबको, देवताओं को आश्वासन दिया ब्रह्मा जी ने। और दूसरे तरफ अब कथा होती है कि महाराज उग्रसेन राजा थे, सूरसेन कुल के, सूरसेन का कुल आगरा के पास में जगह है, सोरेश्वर और बटेश्वर महादेव का मंदिर है, और ये क्षेत्र सूरसेन के राजधानी थी। और उग्रसेन महाराज के भाई का नाम देवक था, उसकी पुत्री देवकी का विवाह हो रहा था, और विवाह के समय मंगल कार्य पूरा हुआ तो पुत्री के विदाई के समय उग्रसेन के घर में पैदा हुआ बेटा जिसका नाम था कंस, वो उग्रसेन का बेटा नहीं था, वो कालनेमी नाम का असुर था जो पद्मावती उग्रसेन की पत्नी को छल देकर, छल करके उसके उदर से प्रकट हुआ था। तो ये कंस देवकी और वसुदेव को रथ के ऊपर सारथी बन के अपनी बहन को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। तो देवताओं ने कहा कि कंस इतना धर्मात्मा हो गया और भगवान के होने वाले माता पिता की इतनी सेवा की तो हमारे भगवान को आने में देर हो जाएगी। तो आकाशवाणी हुई, है मूरख कंस, जिसकी सेवा में जा रहा है इसी का सातवां गर्भ आपका मृत्यु। अब ये नहीं कहा बेटा या बेटी, गर्भ कहा, वहीं से देवताओं ने कंस को धोखे में रख दिया। अब बेटा होगा कि बेटी होगा कुछ पता नहीं, इसका सातवां गर्भ, आठवां गर्भ और आपका ये आपका होगा, विनाश करेगा। अब कंस एकदम रथ की बाग छोड़ दी, बालों से पकड़ के देवी की को और तलवार निकल के मारने को तैयार हो गया। इसको कहते हैं असुर तब तक आपसे प्रेम करते हैं जब तक उनकी इच्छाओं के ऊपर कोई घात नहीं होता है, नहीं तो एकदम असुर प्रकट असुर हो जाती है, जब उनके उनकी कामनाओं के ऊपर कोई घात करता है तो असुर का स्वरूप वापस आ जाता है। अब देव वसुदेव कहता है मेरी पत्नी है, रक्षा करना मेरा धर्म है और मंगल कार्य का समय है। वसुदेव ने कहा हे भोजराज के पुत्र कंस, एक नारी का वध करना ये तो आप जैसे को शोभा नहीं देता है, और मृत्यु तो सबको आनी है, जो जन्म लिया है उसको मृत्यु आती है, बोला ये आपका प्रवचन मेरे को काम नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी बदनामी होगी, शाम दाम दंड भेद। जब देखा कि कंस मान नहीं रहा है तब कहा कि आप को मैं वचन देता हूं वसुदेव, इसके देवकी की आपको देवकी से तो भय नहीं है ना, आपको भय इसके संतानों से, मैं वचन देता हूं कि इनके सब संतान जिनसे आपको भय नहीं है आपको लाके दे दूंगा। इसका अर्थ है जिससे भय वो नहीं दूंगा। बहुत बड़ा होशियारी से ये बात कही है। कंस को विश्वास था वसुदेव के ऊपर, क्योंकि वसुदेव का जब जन्म हुआ था तो देवताओं के दुमदुबियां और मृदंग अपने आप बज गए थे, इसलिए वसुदेव का एक नाम है आनंक दुमदुबी, जिसके जन्म के ऊपर देवताओं के बाजे अपने आप बज गए थे। अब देवता वसुदेव तो अपने घर चला गया देवकी को लेकर, और यहाँ नारद जी सीधे कंस जी के पास आए और कहा भोजराज कंस बड़ा आनंद में मगन लग रहे हो, क्या बात है, ठीक हो ना, एक बालक पहला हुआ, जन्म दिया वसुदेव और देवकी के, या एक बालक हुआ, वसुदेव देवकी की आंखों में आंसू देखे, अपने सीने पे पत्थर रख के बालक को लाके अपने वचन को सत्य करने के लिए कंस के हाथ में दिया। कंस ने कहा इससे मुझे भय नहीं है, आठवें से भय, इसको ले जाओ वापस। वसुदेव कहता है कंस इतना दयालु कैसे हो सकता है, बहरहाल जो इच्छा है नहीं मारा तो ले जाता हूँ। इतनी देर में नारद जी ने कहा कंस वसुदेव के बालक को वापस कर दिया, मैं देवलोक से आ रहा था, मैंने अभी अभी देखा सारे देवता यदुवंश में प्रकट होके आपके आपके विपरीत बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। महाराज विष्णु बड़ा छल करता है, आप गिनती करके दिखाओ कि आठ कहां से होता है। एक अष्ट दल कमल लिया, कहा कि गिनो इसकी पंखड़ी, एक दो तीन चार आठ। अब बोला ये आठवीं को गुनो, एक आठ होते हैं कि नहीं होते हैं? अब बताओ ये उंगलियां पड़ी है यहां से आठ, कौन सी आठवीं है? ये विष्णु बड़ा छल करता है। इतना कह के नारद तो चला गया। तो क्या नारद झूठ बोल के गया? नारद ने ऐसे क्यों किया? नारद जानता था, अज्ञानता से नहीं किया था। नारद जानता था कंस काल नैमी असुर है और इस और छह बच्चों को शराप है जो इसको अपने हाथ से मारने हैं। इसलिए नारद ने तो केवल संकेत दिया जो उसको भूल गया था। अब कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल के उनके आंखों के सामने पहले बच्चे को पत्थर के ऊपर पटका और आगे पांच और बच्चे हुए और छह बच्चों को इस तरीके से कंस ने पत्थर के ऊपर पटक के मारा। इनको बोलते हैं षड गर्भ। ये छह गर्भ कहलाते हैं। षड गर्भ कौन है ये? कहते हैं मरीचि के पुत्र छह थे देवता। जब ब्रह्मा जी अपनी मानसिक पुत्री वाघ के पीछे भाग रहे थे तो ये दांत निकाल के हंस रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि असुर बन जाओ। तो ये हिरण्यकशिप के पास असुर बन के आए, तब तपस्या कर रहे थे। हिरण्यकशिप को क्रोध आया कि किसके लिए तपस्या कर रहे हो? मैं हूं, मेरे लिए करनी चाहिए, तो तुम्हारे को मैं श्राप देता हूं, तुम अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। तो ये काल नैमी असुर के पुत्र थे और काल नैमी कंस इसके हाथों मरने थे, तो ये परस्पर श्राप आगे से आ रहा था, इसलिए षड गर्भ इसको बोलते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इसकी उपमा देते हैं कि मरीचि मन का प्रतीक है और मन के छह दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। देवकी भक्ति स्वरूप है और कंस भय है। संसार में जब संसार के माया मोह के भय से भक्ति वाले नकोमल हृदय से ये सब दोष निवृत्त होते हैं तब भगवान का प्रकट्य होता है। तो यहां षड गर्भों के बाद बलराम जी देवकी के उदर में आए अनंत शेष। क्यों आए? बोला आसन पहले आता है भगवान के आने से, भगवान का आसन है। उस वक्त भगवान ने देवी का गोलोक में आवाहन करके कहा देवी बलराम मेरा धाम है और ये रोहिणी का नित्य पुत्र है, इस वक्त मेरे लिए आसन तैयार करने गया है, अब आप इसको यहां से खींचकर रोहिणी के उदर में स्थापित करो, क्योंकि आपके खींच के ले जाओगी इसका नाम संकर्षण होगा और ये सबको आनंद देगा, इसके लिए इसका नाम राम होगा और बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसको बलराम कहेंगे, बलभद्र भी कहेंगे। तो भगवान ने देवी को बलराम जी को वहां ले जाने के लिए आदेश दे दिया और नामकरण भी कर दिया। ऐसे कोई ना कहे कि बलराम पहले आया तो बड़ा है इसलिए बड़ा है और कृष्ण बाद में आया तो छोटा है। नामकरण देख कर करके रवाना कर दिया। फिर कहा देवी भद्र और सुनो, ये मुश्किल काम नहीं है, हमारी कृपा से आप ये कर लोगी, आप ओम का उच्चारण कर लो। एक और काम आपको करना है, मेरी अनुजा छोटी बहन के रूप में यशोदा के घर में प्रकट हो जाना, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। कलयुग में विंध्या पर्वत में वैष्णवी देवी के नाम से, भद्रा के नाम से, दुर्गा के नाम से, चंडी के नाम से आपकी पूजा होगी, ऐसे भगवान ने देवी को वरदान दिया है। और देवी ने सातवां गर्भ देवकी के उदर से वे खींच कर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। और श्लोकों ने तो कंस को कलंक लगाया कि सातवां गर्भ कंस ने गिराया होगा और रोहिणी के यहां सातवें गर्भ उदर में आ गया। रोहिणी मथुरा में रहती थी, कंस के कारागृह, कारागृह कोई जेल की कोठरी नहीं थी, हाउस अरेस्ट की तरह था, पांव में बेड़ियां थी, हाथ में हथकड़ी थी। रोहिणी सेवा करने जाती थी, जब गर्भवती हो गई रोहिणी तो अक्रूर काका घोड़ी के ऊपर चढ़ा के नंद बाबा के वहां छोड़ के आए, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव भाई है, आपको अभी बताया था एक ही पिता के दो पुत्र क्षत्रिय और वैश्य स्त्रियों से हुए हैं, ये आगे चल के आपस में जो है वो भाई है। अब भगवान के प्रकट्य का भूमिका बन रही है। भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविशेषण सभागेन मन अनंक दुबदुबी। ये श्लोक भागवत में है। भगवान अपि विश्व आत्मा, भगवान जो सबके हृदय में अंतर्यामी रह के रूप में रहते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं और सबके सौहृद हैं, वो भगवान मुख्य काम क्या करते हैं? भक्ता नाम अभयंकर, अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। वो भगवान आज वसुदेव के मन में अपने सारे अंशों के साथ प्रविष्ट हुए, तो भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए। फिर लिखा है वसुदेव के मन से जगत के मंगल करने के लिए भगवान देवकी देव रूपेण देवकी के हृदय में स्थानांतर हुए। जैसे सूर्य अस्त होते समय अपना तेज पूर्व दिशा में चंद्रमा में देता है, ऐसे मानो वसुदेव ने, जैसे गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, अपने हृदय में जागृत किया हुआ भगवान कर्ण के द्वारा शब्द के रूप में अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है, ऐसे वसुदेव ने अपने नेत्र मार्ग से भगवान के तेज को देवकी के हृदय में स्थान अंतर किया, मानो दीक्षा दी। और वसुदेव चमकने लगा भगवान जैसे हृदय में आ गया, और फिर देवकी चमकने लगी। जिसके हृदय में भगवान का प्रकट्य हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उसका बहुत बड़ा तेज होता है, उसके सामने आने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आप ये सब होने लगता है। जिसके हृदय में भगवान का प्रकट्य होने लगता है, उतने ही अंश में लोगों के उसका प्रभाव का पता लगने लग जाता है। लेकिन देवकी के भय के कारण भय लगता था कि आग के ऊपर जैसे राख पड़ी हो। लेकिन कंस आया है देखने, देखता है कि देवकी गर्भवती है, लेकिन चमक रही है, प्रकाश है, लगता है मुझे मारने वाला आठवां इसके उदर में आ गया है। लेकिन फिर एकदम कहता है एक स्त्री है, गर्भवती है, मेरे आश्रित है, इसको इस वक्त मारना ये ठीक नहीं है। भगवान जब किसी के हृदय में आ जाते हैं तो कंस जैसा क्रूर होता है, उसका भी मन बदल जाता है, वो भी कुछ करने में समर्थ नहीं होता है, और यहां से कंस वापस चला जाता है। और अब सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए, गर्भ स्तुति करने के लिए, शंकर जी ब्रह्मा जी को और नारद जी को साथ लेकर चंद्र वरुण इंद्र ये सब देवता कंस के कारागृह में, उस काल कोठड़ी में, देवकी के उदर में जो भगवान विराजमान है, उसको प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप सत्य व्रत हो, आपका वचन सत्य, आपने कहा था, आप आ गए, आप सारे सत्यों का आधार है, सत्य आपके ऊपर टिका रहता है, आप सत्य की योनि है, आप तीनों कालों में सत्य है, भगवान आप अवतार लेते हैं। तब ये साधु संत आपके चरणों की नौका बनाकर भवसागर को पार कर जाते हैं, और दूसरे तरफ जाके नौका ये भक्ति का मार्ग सबके लिए छोड़ जाते हैं कि दूसरे लोग भी अपने जीवन को सफल कर सके। और फिर देवता कहते हैं वसुदेव देवकी आप चिंता मत करो, अब आपका रक्षक और विश्व का कल्याण करने वाला प्रकट होने वाला है, अब ये समय तैयार होता है। देवता यहां से प्रकट प्रणाम करके वापस जाते हैं परिक्रमा करके। इसके बाद काल की शुद्धि हो गई। काल की शुद्धि होगी का मतलब ये कि सबके दिन बदल गए, सबको बहुत अच्छा लगने लग गया। आकाश में अब ये सातवां मनवंतर है, विवस्वत मनवंतर है, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का चौथा चरण है, भाद्रपद, और तब आकाश में बादल होते हैं, लेकिन आज तो आकाश में सारे तारे चमक रहे हैं, दिशाएं चारों ओर से निर्मल हो गई, और प्राची दिशा का उदाहरण दिया गया है देवकी के लिए, तो देवकी अगर प्राची दिशा है तो वो भगवान की मां है, तो बाकी दिशाएं सब कहते हैं हमवासी हो गई ना, तो आज हमारी बहन के घर में भगवान